ओम शांति। एक बार और थोड़ा प्यार से बोलेंगे ओम शांति। प्यार से तो बोला, थोड़ा मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। वाह, मुस्कुरा के भी बोल दिया। अभी थोड़ा आपस में एक दूसरे को देखकर ओम शांति बोलिए। वाह, बहुत अच्छा। सब शांति में है? अच्छा, पीछे देख के नहीं बोलना है, आगे बाबा को देखना है। बहुत अच्छा, सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। बाबा के घर में आप सब ज्ञान सरोवर की अरावली की वादियों में हैं। 3 दिन से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 3 दिन से यहाँ लगातार लगातार ज्ञान की धारा बह रही है और आप सब उसमें सराबोर हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये अमृत धारा, ये कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी होने जा रही है और उसका ये बहुत सुंदर सत्र है और जिसका विषय भी इतना सुंदर है, सेल्फ एम्पावरमेंट विथ गॉड्स विजडम, ईश्वरीय प्रज्ञा से आत्म सशक्तिकरण। आज इस समाप्ति की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो इतने सुंदर विषय के साथ हम इस मीडिया कॉन्फ्रेंस को पूरा करेंगे। आत्म सशक्तिकरण, आप सबने प्रातः 3 दिन तक हमारे राजयोग शिविर में बहुत सुंदर विषय को हमारी वरिष्ठ दीदियों के द्वारा सुना और कल जैसे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी ने इस विषय को बहुत अच्छे से आपके साथ साझा किया था और उन्होंने समझाया था कि सर्वोच्च सत्ता कौन है। वो सुप्रीम पावर जिससे हम अपनी आत्मा को, सोल को कनेक्ट करके अपने आप को इम्पावर कर सकते हैं। आपने जाना, पहचाना कि आप एक आत्मा हैं और आत्मा की मूलभूत शक्तियां क्या हैं। शिवानी बहन जी आए, उन्होंने आत्मा की 7 क्वालिटी 7 गुण से हम सबको अवगत कराया। तो बहुत 3 दिनों के अंदर बहुत तरह से हम भरपूर हुए और आज इस सत्र में भी हम कुछ अपने अनुभवी वक्ताओं से, कुछ महानुभाव जो ज्ञान से भरपूर हैं, ऐसी अथॉरिटी हमारे बीच हैं, तो उनको भी हम सुनेंगे, लाभ लेंगे। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ, बड़े ही नम्रता के साथ आप सभी को, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी। और इस उम्मीद से भरी हुई जो ये शाम धीरे धीरे आ रही है, इस उम्मीद से भरी हुई शाम में भले ही मैं तो कहूंगी ऑडियंस कम है तो क्या गम है, ऑडियंस कम है तो बोलेंगे साथ में, ऑडियंस कम है तो क्या गम है। वाह, भगवान का घर मिला ये क्या स्वर्ग से कम है। आप सब ज्ञान सरोवर में आए, 3 दिन से यहाँ है तो ये क्या कोई स्वर्ग से कम है। आप सब ने 3 दिन तक स्वर्ग की अनुभूति की होगी और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा रखती हूँ, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। और हमारे जो मीडिया विंग की टीम है, हमारे आदरणीय शांतनु भाई जी जो नीचे बैठे हुए हैं, उनके मन में भी ये विश्वास है कि जब आप यहाँ से जाएंगे, शायद कल जाएंगे, आज रात को जाएंगे और जाकर जो फीडबैक देंगे कि आप कहाँ गए थे, कैसा माहौल था, क्या मैनेजमेंट था, तो मैं सोचती हूँ कि शायद आप तो यही कहेंगे कि वो धरनी स्वर्ग से कम नहीं है। आपने 3 दिन तक देखा ये भगवान का दरबार ऐसे अपने आप चल रहा है, वो पावर, वो शक्ति यहाँ काम कर रही है जो हम सबको एक प्रेरणा देती है, एक ऊर्जा भरती है। और ये ऊर्जा ज्ञान सरोवर से, माउंट आबू की पावन धरनी से देश क्या विदेश में, सारे संसार में फैल रही है और उम्मीद है कि इस ऊर्जा से निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, आएगा, आएगा और ये कलयुगी धरती स्वर्ग बन जाएगी। और स्वर्ग बनाने के लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा भाई और बहन सतत रूप से मुझे बताते हुए गर्व होता है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है और आपको सुनते हुए आश्चर्य होगा। पर आपको विश्वास करना होगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान पिछले 8 दशकों से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 86-87 वर्ष हो गए तब से परमात्मा का ये भागीरथ कार्य इस धरती से निरंतर चल रहा है। हमारी दादियों ने और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो इस संस्था के फाउंडर फादर हैं, उन्होंने एक स्वप्न देखा है कि इस कलियुगी धरती को हम सब मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। और ये कल्पना नहीं है, मात्र एक सपना नहीं है, ये साकार भी होने जाएगा, जरूर पूरा होगा। और उसमें, इस सपने को साकार करने में मीडिया जगत से पधारे हुए जो आप सब सम्माननीय हमारे भाई और बहन हैं, आपका भी निश्चित रूप से इस पुनीत कार्य में योगदान अवश्य रहेगा, क्योंकि कहते हैं सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार की स्थापना होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन सारे गांव वालों ने अपनी अपनी उंगली का सहयोग दिया, तो जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबकी भी वो सहयोग की उंगली लगेगी तो निश्चित रूप से ये कलियुगी संसार स्वर्णिम संसार बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये सत्र शुरू करते हैं और मैं मंच पर बहुत ही सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ अपने सम्माननीय वक्ताओं को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैं आग्रह करूंगी हमारी आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर बीके बिन्नी सरीन दीदी जी को, आप मंच पर पधारें और जो भी इस सभा में हैं तालियों के द्वारा हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राजेश भोजक भाई जी को, आप भी मंच पर पधारें, आपका भी जोरदार तालियों से मंच पर सम्मान है। भ्राता श्री मनीष कुमार आहूजा जी, भ्राता मनीष कुमार आहूजा जी सीनियर करेस्पोंडेंट दैनिक भास्कर पीलीवंगा राजस्थान से हमारे बीच हैं, आपका भी मंच पर सादर स्वागत है। सिस्टर रंजीत कौर संधू जी, आप सीनियर रेडियो जर्नलिस्ट मोहाली से हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी मंच पर सादर सम्मान है, स्वागत है। मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय देवी भ्राता नितेश वी कैलेंडर साहब, चीफ एडिटर सिटी न्यूज अमरावती से हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी मंच पर भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता संदीप कुमार श्रीवास्तव जी, आप संबलपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय देवी भ्राता रमेश चंद्रा दास जी को, आप भी मंच पर सादर पधारे, आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही सीनियर ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर देवी बहन बीके चंदा जी, आप भी मंच पर पधारे, आपका भी मंच पर सादर सम्मान है। मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय देवी भ्राता बीके शशिकांत जी जो गुजरात से हमारे बीच हैं, आपका भी मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जो इस सभा में अनमोल रतन बैठे हुए हैं, आप सब का भी बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं चाहूंगी एक बार मंच पर उपस्थित और सभा में उपस्थित सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, थैंक यू। और जैसे कि कोई भी कार्य की शुरुआत उस प्यारे प्रभु के आह्वान के साथ करते हैं। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम सब 2 मिनट के लिए परमात्मा का आह्वान करेंगे। जो शिव से लगन लगाए वो परमानंद पाए, इन्हीं भावों के साथ हम आज के इस सत्र की सुंदर शुरुआत करते हैं। और मैं तो कहूँगी शुभ दिन है आज का, स्वागत है आपका। शुभ दिन है आज का, स्वागत है आपका। हम सब भारतीय हैं और भारतीयों के अंग अंग में भारतीय संस्कृति रची और बसी है। भारतीय संस्कृति हम सबको अतिथि देवो भव की भावना से भरपूर रखती है। और आज भी इस सत्र में पूरे देश से, दूर दराज से हमारे माननीय मेहमान अतिथिगण, देवगण जिन्हें हम कह सकते हैं, वे मंच पर विराजित हो चुके हैं। मैं बहनों से आग्रह करूंगी कि अतिथि देवों की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए अंग वस्त्र, फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता और बैज लगाकर सम्मानित करें, स्वागत करें। हमारी योगिनी बहन जी जो अजमेर से हैं और इस कॉन्फ्रेंस में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं और आज मंचासीन हमारे सभी अतिथियों का दिल की गहराइयों से, मन के सुंदर भाव से स्वागत कर रही हैं। आप सब भी अपने स्थान पर बैठे हुए अपना स्वागत स्वीकार करें और तालियों से स्वागत की इस सुंदर बेला को और भी सुंदर बना दें। अरावली की पहाड़ियों में आज अलग ही खुशबू है, अलग ही रौनक है। 3 दिन से यहाँ पर हमारे मीडिया जगत की महान महान हस्तियां उपस्थित हैं और सबके अंदर एक ऊर्जा भर रही है। ऐसे खुशनुमा माहौल में, ऐसे ज्ञान युक्त शांत वातावरण में हम सब ज्ञान की समृद्ध धारा में सराबोर होते जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। मंच हमारा सज चुका है। आप सब एक बार जोरदार तालियों से मंचासीन सभी मेहमानों का अभिनंदन करें। भले ही गर्मी है बेसुमार, भले ही बाहर गर्मी है बेसुमार, पर आपके आने से ज्ञान सरोवर में छाई है बहार। पर आप सब के आने से ज्ञान सरोवर में छाई है बहार। क्या कहें, क्या कहें, हमारे दिल में क्या है उद्गार। बस इतना ही कहेंगे, आप सबका स्वागत है बारंबार, आप सबका स्वागत है बारंबार। ज्ञान सरोवर के इस आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में देश भर से हमारे मीडिया कर्मियों को पिछले 3 दिनों से कई सत्रों में कई अनुभव प्राप्त हुए, मीडिया क्षेत्र के अनेक अनुभवी वक्ताओं से हमने अनेक तरह के विचारों का लाभ प्राप्त किया। प्रभु के इस सुंदर घर में, इस सुंदर प्रांगण में आध्यात्मिक संचार के प्रकंपन सारे संसार में फैल रहे हैं और मैं कुछ पंक्तियों के साथ आज के इस सत्र को शुरू करना चाहूंगी कि आध्यात्म के घर में मीडिया के महारथी आए हैं, इसमें भी कोई राज की बात होगी। संचार के साधनों से होगा आध्यात्मिक संचार, यही नई मीडिया की पहचान होगी। फेक न्यूज, हेट न्यूज, पेड न्यूज से अब दूर रहें, गॉडली न्यूज और गुड न्यूज से अब दिन की शुरुआत करनी होगी। अथक निडर बन सेवा कर रहे मीडिया कर्मी, प्रभु के याद से आप सबकी जिंदगी अब आसान होगी। ईश्वरीय शक्ति से लोगों की तकदीर बदल रही और आत्म सशक्तिकरण की अब यह रीत शुरुआत होगी। आधुनिक मीडिया से दुनिया आस लगाए, हाँ सच में आधुनिक मीडिया से दुनिया आस लगाए, आपसे ही नए भारत की पहचान होगी, आपसे ही नए भारत की पहचान होगी। और हाँ, ताली बजा सकते हैं नए भारत की पहचान के लिए। और इन्हीं सुंदर भाव के साथ हम कहना चाहेंगे कि पिछले जो हमारा इनसाइट एक सेशन था, उसमें हमने शिवानी बहन जी से आत्म सशक्तिकरण के बारे में सुना, कैसे उन्होंने बताया कि वर्क प्रेशर को हम खुशी खुशी के साथ मैनेज कर सकते हैं। उनकी जो बताने की विधि थी या उन्होंने जो बातें हमारे साथ शेयर की, उसमें ज़्यादातर अगर आप ध्यान दें तो अपने ऊपर ही केंद्रित थी, क्योंकि जो व्यक्ति, जो आत्मा खुद को पहचान जाती है वो खुदा से रूबरू हो जाती है, जो आत्मा को पहचान जाती है वो परमात्मा से जुड़कर सशक्त और शक्तिशाली बन जाती है। स्वयं को परिवर्तित किए बगैर हम जीवन की किसी भी परिस्थिति को, बाहर के वातावरण को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में पहला लेसन आत्मा का ही पढ़ाया जाता है कि अगर आत्मा को हम पहचान जाएंगे, आत्मा को जान जाएंगे और उसको सशक्त कर लेंगे तो हमारे जीवन की हर परिस्थिति स्वस्थिति से ठीक हो जाएगी। और आज के इस इनसाइट सेशन में हम अपने अंतर मन को सशक्त करने की विधि के बारे में जानेंगे। आत्म सशक्तिकरण से ही हम भारत को भी सशक्त कर सकते हैं। और आप सब बहुत भली भांति जानते हैं, मैं आप सब से बताना चाहूंगी कि कुछ 2-3 साल पहले माँ भारती जब एक आदर्श शत्रु कोविड-19 के दौरान, कोविड से हमारी पूरी माँ भारती एक जंग लड़ रही थी, उस समय लोगों के अंदर ईश्वरीय प्रज्ञा की एक पहचान देखने को मिली। आध्यात्मिक रूप से सशक्त रहकर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति हमें मिली। और जो उस दौरान आत्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से सशक्त थे, वही उस परिस्थिति का सामना भी कर पाए। इस दौरान मुझे भी शोध करने का एक अवसर मिला। कोविड-19 के दौरान सकारात्मकता को प्रचारित करने में आध्यात्मिक संचार की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर हमने भी अपना शोध किया। और जब शोध किया तो जाना कि कोविड में शुरू में कुछ ऐसी खबरें आई जिससे लोगों को भय हुआ, चिंता हुई, डर हुआ, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद मीडिया ने अपनी बहुत सुंदर भूमिका निभाई। और उस समय कुछ न्यूज चैनल पर, जैसे आप सब जानते हैं, रामायण महाभारत फिर से प्रसारित की गई, जो लोगों को एक संबल और शक्ति दी। कुछ न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें छपी थी उस दौरान कि कई बुजुर्गों ने अपनी पूरी पेंशन लोगों के लिए लगा दी, कई गांव की महिलाएं आगे आकर मास्क बना रही हैं और कुछ अपना सहयोग दे रही हैं, मजदूरों को भोजन दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उस समय। तो इस टाइप के जब न्यूज समाचार पत्रों में आई और मीडिया ने जो एक बहुत सुंदर सकारात्मक भूमिका निभाई, तो लोगों को शक्ति मिली, हिम्मत मिली। इसी तरह से मीडिया अपना समाज को परिवर्तन करने में बहुत सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं। बस जरूरत है कि मीडिया की दशा और दिशा बदल जाए, और बदलने के लिए ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ने ये 3 दिवसीय सुंदर आयोजन यहाँ रखा है, जिसकी हम समाप्ति की ओर हैं। तो इस विषय पर कैसे हम और मीडिया को सशक्त कर सकते हैं, आत्मा को सशक्त कर सकते हैं, इस विषय पर बहुत सुंदर अपने विचार रखने के लिए आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर बिन्नी सरीन दीदी जी उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको बुलाना चाहूंगी और उनका कुछ परिचय आप सबको देना चाहूंगी। आप रीजनल डायरेक्टर ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ फॉर इंडिया, आप डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल पीस इनिशिएटिव ऑल इंडिया काउंसलिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड आप सीनियर मैनेजमेंट काउंसलर भी हैं हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो माउंट अबू राजस्थान में है। आपको इंडिया के प्रेसिडेंट की ओर से नोबल डॉक्टरेट प्राप्त है, इसके लिए आप सब तालियां बजा सकते हैं, नोबल डॉक्टरेट प्राप्त है। और कई सारे अवार्ड से आपको नवाजा भी गया है, जिसमें नेशनल गौरव अवार्ड आपको प्राप्त है, आपको पीस अवार्ड प्राप्त है, आइकॉनिक वुमेन अवार्ड प्राप्त है, PRCI चाणक्य अवार्ड भी आपको प्राप्त है, और इसके अलावा भी कई सारे आपकी सेवाओं के लिए अवार्ड से आपको नवाजा गया है। इसके अलावा आपने देश के बाहर भी अपनी आध्यात्मिक यात्राएं की हैं, जिससे अनेक आत्माओं को लाभ भी प्राप्त हुआ है, जिसमें USA, कनाडा, UK, स्कॉटलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नेपाल, थाईलैंड, हांगकांग और भी बहुत सारे देश की आपने ईश्वरीय सेवार्थ लोगों को जागृत करने, लोगों के जीवन में सुख शांति को लाने के लिए आपने ऐसी धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक यात्राएं की हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको बुलाना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर बिन्नी सरीन दीदी जी। और उसके पहले मैं बहनों से आग्रह करूंगी कि हमारी राजयोगिनी चंदा बहन जी पहुंच चुकी हैं, उनका भी आप बैज और गुलदस्ते अंग वस्त्र के द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर बिन्नी सरीन दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, और प्यार से और मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। आवाज नहीं आई है, ओम शांति, अभी ठीक है। हमारे कुछ मीडिया के भाई पीछे बैठे हुए हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आगे आ जाएं, क्योंकि आपके आगे आने से और अधिक शोभा बढ़ जाएगी और हम आपको इन्वॉल्व कर सकेंगे। तो कृपया सभी जो पीछे बैठे हैं सभी आगे आ जाएं। अति सम्माननीय हमारा मंच, भारत के कोने कोने से विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे मीडिया के भाई बहने, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारा जो अंतिम सत्र है उसकी थीम का चुनाव बहुत ही विजडम के साथ किया गया है। इसके लिए मैं हमारे आदरणीय करुणा भाई और शांतनु भाई को भी धन्यवाद दूंगी। और रीना बहन ने शुरुआत में ही कहा कि इस सत्र को हम यहाँ समापन नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक विशेष रूप से एक सेल्फ एम्पावरमेंट के साथ आप यहाँ से जाएंगे, और उसके लिए गॉड्स विजडम को कैसे हम यूज करें, कैसे हम अपने जीवन में अपनाएं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी। और जो कहना था मगर कह नहीं सके वो मर्यादा थी, वो जीवन की मर्यादा थी। विजडम जो है वो जीवन के अंदर हमें मर्यादा सिखाती है, वो हमें ये भी सिखाती है कि कई बार हमें ऐसे शब्द जो हमें बोलने चाहिए और कैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, उसमें विजडम को कैसे अगर हम यूज करें। आज का ये जो टॉपिक है इसमें अगर हम देखें तो दोनों का बहुत गहरा महत्व है, क्योंकि सेल्फ एम्पावरमेंट विद गॉड्स विजडम, हाउ सेल्फ एम्पावरमेंट कैन बी पॉसिबल एंड इट कैनॉट बी पॉसिबल विदाउट गॉड्स विजडम। अब गॉड्स विजडम की अगर हम बात करें कि देखिए क्या फर्क है विजडम में, इन्फॉर्मेशन में तीन बातें आती हैं, क्योंकि आप सभी मीडिया के यहाँ उपस्थित हैं तो इन्फॉर्मेशन तो आप सभी के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन को हम यूज करते हैं तो वो नॉलेज बन जाती है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को बहुत सोच समझकर हम अपने कार्य में लाते हैं, संकल्प बोल और कर्म तीनों का बैलेंस रखते हुए जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो विजडम बन जाती है। लेकिन विजडम जो है हिंदी में उसको प्रज्ञा और बुद्धि कहा गया है। देखिए बुद्धि सबके पास होती है लेकिन विजडम कब बनती, इसीलिए हिंदी में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा शब्द है सद्बुद्धि। कहा गया है कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि देना, आपने देखा होगा कई प्रेयर्स में ये बात आती है। सद्बुद्धि क्यों थी कहा गया है कि बुद्धि तो हम सबके पास में है, लेकिन सद्बुद्धि वो कैसे बन जाती है, जब हमें हमारे जीवन में ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। और जब ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है, जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर कुछ मैं आपके सामने सिक्स सिंपल स्पिरिचुअल स्टेप्स, फोर एस हैं ये, आपको याद करने के लिए कुछ मैंने कॉन्टम्प्लेट किया। SSSS फोर, सिक्स सिंपल स्पिरिचुअल स्टेप्स फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। बहुत सिंपल तरीके से आप कहीं ना कहीं सुनते भी रहे होंगे इसको, कैसे हम अपने आप को एम्पावर करें। सबसे पहली जरूरत है एम्पावरमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान। आप यहाँ पर अगर आए हैं तो क्या डिफरेंट आपको मिल रहा है और क्या ऐसी अनुभूति मिल रही है, वो एम आई। हम सभी अपनी रोल्स में हैं लेकिन इसके पीछे एक शक्ति है और वो शक्ति है अपने आप को जानने की। आप सभी ने इसको अंडरलाइन किया होगा कि आप इस शक्ति के साथ जा रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कोई साधारण नहीं, हम महान हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आनी शुरू होती है तो एक बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में आती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। कहा गया है कि नेवर लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें अपना कभी भी सम्मान जो है, स्वाभिमान जो है, वो कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे हम किसी भी रोल में हैं, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं, चाहे हमारा छोटा सा भी कार्य है, लेकिन छोटा कार्य भी अगर हम रिस्पेक्ट के साथ करते हैं तो हमारे कार्य को भी रिस्पेक्ट मिलती है। इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, समय की सीमा देखते हुए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में आज के समय में, क्योंकि मैं ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाओं से जुड़ी हुई हूँ और लगभग 30-35 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी का पहला समाज सेवा को समर्पित ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि लगभग आसपास के गांवों में 100 से अधिक गांवों में निशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, और उसके साथ साथ आध्यात्मिकता को मेडिटेशन एज अ मेडिसिन यूज किया जा रहा है। इसीलिए मैंने सेल्फ केयर क्यों कहा, क्योंकि आज के समय में हमें सबको अपने खुद की हेल्थ की संभाल रखनी है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं, और सेल्फ केयर के साथ में जो बहुत आवश्यक है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जिसको हिंदी में कहेंगे आत्मनिरीक्षण। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर मेडिटेशन का और आध्यात्मिकता का, सेल्फ एम्पावरमेंट का ये स्टेप है कि सारा दिन के अंदर अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम अपने आप को चेक करें कि क्यों हुई है, और अगर किसी के साथ हमारा ऐसा व्यवहार हुआ है तो हम उससे माफी मांग लें। किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया, किसी से मैंने माफी मांग ली, किसी को मैंने माफ कर दिया। हमारे जीवन के अंदर एक छोटी सी माफी हमारे जीवन में हमको कितना एम्पावर कर देती है। और उसके आगे जो पांचवा स्टेप आता है उसको हम कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम अपने आप को अगर परिवर्तन ही नहीं करते हैं तो हम सेल्फ एम्पावर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हम सभी प्रतिदिन संकल्प भी लेते हैं मेडिटेशन जब करते हैं, और आप सभी भी जो यहाँ से जाएं तो अवश्य ही एक परिवर्तन का संकल्प लेकर जाएं कि मुझे अपने आप में क्या परिवर्तन करना है। और जैसे जैसे हम अपने आप को परिवर्तन करने का संकल्प लेते हैं तो अपने आप ही जो आज का विषय है सेल्फ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण पॉसिबल हो सकता है। और ये सशक्तिकरण जो है उसको और अधिक अगर मजबूती मिलती है तो वो परमात्मा की विजडम से, जिसको कि हम अपनी स्टडी में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक टाइम था जब MQ बहुत इम्पॉर्टेंट था, मॉरल क्वेश्चन, टाइम था जब IQ बहुत इम्पॉर्टेंट था, बट द टाइम हैज कम जब SQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आज के समय में मुझे याद आता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मेरा बहुत समय इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने ही मुझे PhD करने के लिए इंस्पायर किया। इसी हॉल में थे वो, और हमारे एक प्रोजेक्ट का वैल्यूज फॉर हेल्थ केयर का लॉन्चिंग हुआ था, आई थिंक इट वॉज 2007, और मैं यहीं थी और हम उनसे बातचीत कर रहे थे। और उन्होंने मुझे कहा कि आप, क्योंकि मैं जब 6 साल की थी तब मैं इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ गई और यहाँ ही बड़े हुए, पहला परिवार था, पहले बच्चे थे। तो उन्होंने जब हमारी स्टोरी सुनी तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, वाई डोंट यू डॉक्यूमेंट, आपने संस्था को एक छोटे रूप से इतने बड़े रूप में होते हुए देखा है, आपको इसको डॉक्यूमेंट करना है। तो मैं आज भी उनको गुरु के रूप में मानती हूँ, टीचर के रूप में, क्योंकि उन्होंने इसी हॉल के अंदर मुझे इंस्पायर किया। तो इसीलिए मैं SQ की बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि वेयर द साइंस फेल्स देयर द स्पिरिचुअलिटी वर्क, जहाँ सब कुछ फेल होता है वहाँ आध्यात्मिकता जो है जीवन को और शक्तिशाली बना देती है। अब अगर हम इस बात को देखें, अगर विजडम की बात को अगर हम ले, तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत साधारण लोग होते हैं उनमें भी बहुत विजडम होती है। ऐसा ही नहीं होता कि कोई, जैसे कि हम बात करते हैं कि डिजिटल इंटेलिजेंस से ही हमारी विजडम होती है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि उनका एक मुख्य द्वार था अंदर जाने का महल पे, और उसके ऊपर एक मैथमेटिक्स, गणित का फॉर्मूला लिखा गया और कहा कि जो इस फॉर्मूले को हल करेगा वो ही उस दरवाजे के अंदर जाएगा और उसको राजा आधा अपना राज्य दे देंगे। तो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस आए, गणितज्ञ, कोई भी उसको आते थे और वो कोशिश करते थे, कोई भी हल नहीं कर पाया और निराश होकर चले गए। ऐसे में एक व्यक्ति, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति जो था, वो ये बात उसने सोचा, मैं भी जाता हूँ, और उसके साथ बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ थे, तो बेचारा सोचा इनको पहले करने दो तो मैं करता हूँ। तो वो जब व्यक्ति वहां गया तो उसने दरवाजे पर लिखा हुआ फॉर्मूला देखा और उसने क्या किया कि फॉर्मूला देखा लेकिन अंदर जाके उसने दरवाजा खोल दिया। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि तुमने ये क्या कर, कैसे दरवाजा खोल दिया, इतने लोग आए कोई खोल ही नहीं सका। उसने कहा मैंने तो यही सोचा, पता नहीं ये सच में ही इसको हल करने का फॉर्मूला है कि नहीं, इसलिए मैंने अपने मन से सोचकर उसने अपनी विजडम को यूज किया। तो इसी प्रकार से हम सभी को परमात्मा ने बहुत श्रेष्ठ विजडम दी है, लेकिन इस विजडम के अंदर जैसे मैं अंत में इसको वाइंड अप करते हुए आज की जो हमारी स्पिरिचुअल वर्शन जिसको मुरली कहते हैं उसका आंसर आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ था और मैंने सोचा आपको मैं जरूर शेयर करूं हाउ वी कैन यूज गॉड्स विजडम, कैसे हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हुए, क्योंकि मीडिया जो है वो चार आर को लिए हुए है। पहला आर है रोल, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड है रिलेशनशिप्स एंड रूटीन्स। उसमें कुछ नया लाना है हमें आज से, क्या नया लेंगे, क्या ऐसी शुरुआत करेंगे। उसके अंदर आज की विजडम में एक बहुत सुंदर बात आई जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी और वो ये थी कि हमें चार बातों को अपने जीवन में लेकर आना है। वो है हमारे बोल में, हमारे चाल में, हमारे चेहरे में, हमारे संकल्पों के अंदर और हमारी वाइब्रेशंस के अंदर, सभी के अंदर हमें शुभ चिंतन को लेना है, पॉजिटिव थिंकिंग। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ और श्रेष्ठ स्मृति, ये चार ऐसी बातें आज के डिस्कोर्स में जो हमें मिली मॉर्निंग में कि कैसे हम अपने जीवन को एम्पावर कर सकते हैं। और अगर हम इसे एम्पावर करते चले जाएंगे तो तीन चीजों से हमें दूर रहना है। पहला है एंगर, जो हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट कम करता है। दूसरा है ईगो, और तीसरा जो है वो तीनों ही सी से जुड़े हुए हैं, वो है क्रिटिसिज्म, नेगेटिव कंपटीशन और कमेंट। अच्छे कमेंट करें, लेकिन कभी कभी हम ऐसे, आजकल तो देख रहे हैं कि न्यूज में कभी कभी ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं जिससे कि लोगों को हम एक दिशा देने की जगह उनको दिशा से दूर ले जाते हैं। तो हम सभी ये सोचे कि ये सब कुछ करने के लिए, सेल्फ एम्पावर्ड होने के लिए और गॉड्स विजडम को प्राप्त करने की एक ही की है और वो चाबी है राज योगा मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि आपको यहाँ पर मिली है। और मैं अपने अनुभव से जरूर कहना चाहूंगी आपको कि आपको समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हैं और आने पर और अब जाने का भी समय, काफी लोग तो चले भी गए हैं, लेकिन अगर आप एक संकल्प लेके आज से जाएंगे कि मुझे थोड़ा समय निकालकर, सुबह या शाम थोड़ा समय निकालकर भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपनी मीडिया प्रोफेशन में होते हुए भी अपने आप को बहुत बहुत सेल्फ एम्पावर्ड कर सकते हैं और गॉड्स विजडम को अपने जीवन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो बैठे बैठे जो आपके साथ में हैं उनकी तरफ टर्न हो जाइए, उनको मुस्कुराकर देखिए और एक उनको अच्छी सी ब्लेसिंग दे दीजिए। हाँ प्लीज खड़े हो जाए, खड़े होना नहीं तो मैंने कहा बैठ के ही अपने साथ जो दूसरे आपके साथी हैं उनकी तरफ मुड़ जाइए और उनको अच्छी सी ब्लेसिंग दे दीजिए। प्रभु अच्छी सी ब्लेसिंग दे दें, और अभी नहीं तो बाद में दे दीजिएगा, और इस ब्लेसिंग्स की गिफ्ट को लेकर जाएंगे। मैं फिर से आप सभी का यहाँ होने पर, आपके पधारने पर, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इतने सुंदर मन के भाव और विचार आपने रखे, और कैसे हम उस परमात्मा से जुड़कर अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, उसकी विधि है राजयोगा। और राजयोग हमें यही सिखाता है, राजयोग शब्द के ही तीन अर्थ होते हैं, ऐसा योग जिससे हम अपने आप के राज को पहचान सकते हैं, ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों पर अपने ऊपर राज्य कर सकते हैं और ऐसा योग जिसको करने से हम आने वाली नई दुनिया में राजाई पद प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसका पहला अर्थ है कि हम अपने आप के राज को जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। आप सब से अगर कोई आपका इंट्रो लेता है तो नेचुरल है कि आप बताएंगे मैं एक पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, या चैनल हेड हूँ, या न्यूज एंकर हूँ, जो भी है। आज हम अपना रोल करते करते सोल कॉन्शियस की बजाय शायद ज्यादा रोल कॉन्शियस हो गए हैं। नींद में भी हम सोते हैं या उठते हैं, कोई हमें अपने नाम से पुकारता है तो हम पलट के देखते हैं, जबकि ये जो आपका नाम है शायद वो किसी और का भी होगा। आप सब राजस्थान की धरती पर आए हैं। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ के एक बहुत ही महाप्रतापी कहे महाराणा प्रताप जी, उनका नाम आप सबने सुना होगा। सुना है, सबने सुना है उनके बारे में। जाने के जैसे कितनी सारी कहानियां उनके बारे में बताते हैं, इतिहास लिखा गया है उनके बारे में तो, और उनके इतिहास को पढ़ के एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा पैदा होता है। तो उनके ऊपर एक नाटक बनाया गया महाराणा प्रताप जी के ऊपर। किसी को महाराणा प्रताप जी का रोल दिया गया, सिर्फ रोल दिया गया, और कई दिनों तक उसकी प्रैक्टिस भी हुई। और जिस दिन फाइनल जो ड्रामा था स्टेज पर हुआ, बहुत अच्छा वो भाई ने रोल किया। जब ड्रामा पूरा हो गया, नाटक पूरा हो गया, स्टेज के पीछे सब अपना अपना ड्रेस चेंज कर रहे थे, क्योंकि उनको तो महाराणा प्रताप की पोशाक दी गई थी, सारा उनको उसी तरह से गेटअप दिया गया था। बाद में उनको कहा गया कि ये सब अब चेंज करना है, लेकिन वो जो भाई थे उस रोल में इतने खो गए, उन्होंने कहा नहीं, मैं ये ड्रेस बदली नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कौन महाराणा प्रताप। सबने उनके साथ जो और भी रोल कर रहे थे, सबने उनको समझाया कि भाई आप सिर्फ ड्रामा में महाराणा प्रताप थे, अब आपको अपनी ये ड्रेस चेंज करनी है, आप अपनी ओरिजिनल ड्रेस में आ जाओ। कहा नहीं, मैं तो महाराणा प्रताप। ऑर्गेनाइजर को बुलाया गया, ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अब आपको ये चेंज करना होगा। कहा नहीं, समझाने पर नहीं माने, सबने कहा जाने दो, ऐसे ही ड्रेस पहन के ही जाने दो घर। ड्रेस पहन के चल दिए, बाहर निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना था, बस में बैठ गए। बस में जो कंडक्टर होते हैं वो आए, कहा टिकट का पैसा दो। कहा किस चीज की टिकट, मैं कौन हूँ, महाराणा प्रताप। तो कंडक्टर को हंसी आई, बोला मजाक चल रही होगी। थोड़ी देर बाद सबसे पैसे कलेक्ट करने के बाद फिर उनके पास आए, कहा भाई साहब अब पैसे दे दीजिए। कहा नहीं, मैं तो महाराणा प्रताप हूँ। कंडक्टर समझ गए कि इनका थोड़ा दिमाग ऐसा है। थोड़ी देर बाद आगे बस रुकवाई और कहा महाराणा प्रताप जी आपका चित्तौड़गढ़ आ गया है, आप उतर जाइए। और वो महाराणा प्रताप जी उतर गए, क्योंकि उनको तो नशा चढ़ा था, मैं महाराणा प्रताप। कहने का भाव, ये कहानी पूरी हो गई है, कहने का भाव कि उनको सिर्फ रोल दिया गया था, लेकिन वो उस रोल में इतने खो गए कि अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए। आज सेल्फ एम्पावरमेंट तभी हो सकती है जब हम अपने आप को पहचानेंगे, सोल कॉन्शियस होंगे। रोल तो हमें थोड़ी देर के लिए दिया गया है, हम सब इस संसार में अपना अपना पार्ट बजाने आए हुए हैं। उस परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर सिर्फ और सिर्फ अपना रोल अदा करने भेजा है, इसलिए आज का ये सत्र हमें ये ऊर्जा देगा, ये शक्ति देगा कि मुझे अपना रोल कैसे करना है। इसी विषय पर और अधिक हम जानकारी लेने के लिए और अच्छे विचार सुनने के लिए सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी आदरणीय देवी भ्राता डॉक्टर राजेश भोजक जी। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीईओ हैं, निर्भय गुजरात चैनल अहमदाबाद से हैं। और आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार, पीआर प्रमुख, मार्केटिंग विशेषज्ञ भी हैं, राजनीतिक रणनीति निर्माता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, धार्मिक नेता भी हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं और बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। ये सब आपके परिचय में लिखा हुआ है, इसलिए आप सब जोरदार तालियों से आपको सुनना चाहेंगे। आप पीएचडी होल्डर भी हैं और कई सारे संगठनों से, कई सारी राजनीतिक पार्टियों से भी आप जुड़कर सेवा प्रकल्प करते रहते हैं। तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी आदरणीय देवी भ्राता राजेश भोजक जी।
आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को मेरा वंदन। आज का विषय है कि भगवान की ज्ञान या भगवान की बुद्धि के साथ खुद का सशक्तिकरण। सबसे पहले मुझे खुद का सशक्तिकरण करना पड़ेगा इतनी सारी पब्लिक के सामने बोलते हुए। इन्होंने बताया था कि ऑडियंस कम है तो क्या गम है, तो मैं अपने आप को भी सशक्तिकरण करता हूं कि सामने कितने भी हैं, कोई भी है, जो भी है, लेकिन पीछे कौन है मेरे, ये मेरा बड़ा बैकिंग, ऊपर वाला मेरे साथ में है। अब ऐसा है कि सूरज अगर रोशनी देने में इनकार कर दे तो हम चांदनी की रोशनी में भी अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। अब कम ऑडियंस की बात कहूं तो ऐसा है कि जब शेर मैदान में आता है ना तो पूरा जंगल खाली हो जाता है, यहां भी ऐसा हुआ है। इन्होंने एक कहानी सुनाई थी, मैं और एक कहानी सुनाता हूं। दो आदमी एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, मतलब भैया क्यों भाग रहे हो, बोला ये भी कवि है मैं भी कवि हूं। उनकी कविता तो मैंने पूरी सुन ली, मेरी बारी आई तो ये पूरे भागे, यहां भी यही हुआ है। ऐसा है कि भले यहां हमारे सुनने वाले कम है लेकिन ऊपर वाला ने चाहा तो लाल किले से भी बोलूंगा और उनको जबरदस्ती सुनना पड़ेगा मुझे। अब मुख्य विषय पे आता हूं। विषय यह है कि सशक्तिकरण, वो भी भगवान की बुद्धि से या भगवान के ज्ञान से। लेकिन मैं ठहरा एक इंसान, भगवान की बुद्धि क्या जानूं, भगवान का ज्ञान क्या जानूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि कण कण में भगवान है तो मुझ में भी भगवान है। मुझसे, मेरे मुंह से भी जो निकलेगा वो शायद भगवान को भी मंजूर होगा। दो चीजें हैं कि जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो भगवान की बुद्धि, जो बुरी या खराब बातें होती हैं वो शैतान की बुद्धि। अभी खुद का या आत्म सशक्तिकरण, सशक्तिकरण क्या है कि कमियों को पूरा करना, हमारे अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करके अपने आप को सशक्तिकरण करना। तीन प्रकार का सशक्तिकरण होता है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। यहां बात है मानसिक सशक्तिकरण की, कि अगर हिम्मत हार जाओगे तो कोई भी रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैंने खराब बुद्धि और अच्छी बुद्धि की बात की तो एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपके पास पैसे कम है और आपको बुद्धि का उपयोग करना है तो अच्छी बुद्धि से आप क्या करोगे, या तो बचत करोगे, कहीं से पैसा लगे लेके निवेश करोगे, कहीं से मांग के लौटा दोगे अपनी, या बुद्धि से कमा लोगे। और बुरी बुद्धि से आपको सशक्तिकरण करना है तो आप चोरी कर लो, लूटपाट कर लो, किसी से भी छीन लो। लेकिन ईश्वर की बुद्धि ये कहती है कि अच्छे मार्ग से जाओ, विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी यू जस्ट गो अहेड। ये बात होती है कि आप ईश्वर की बुद्धि से आगे बढ़े। ऐसा कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी तुम्हें पूछे कि भाई तेरी रजा क्या है। तो आत्मविश्वास खुद के अंदर हमें करना है। अभी आज का विषय है, मैं आपको बता दूं कि आज से 7 साल पहले 2017 में शांतिवन में इसी विषय पे 4 दिन की रिट्रीट हुई थी, 4 दिन की, और उसी विषय में 7 साल के बाद मैं 7 मिनट बताऊंगा। 7 7 7, हम 7 7 हैं। सशक्तिकरण में ऐसा है कि अपने आप में कुछ ना कुछ आपको डालना है। आप बीमार हैं तो ये बीमारी को दूर करने के लिए कुछ इंटेक अंदर जाना चाहिए कि आपकी बीमारी दूर हो जाए। और सशक्तिकरण आपको तो मालूम पड़ेगा कि आप असत है, आप में क्या कमियां हैं। फर्स्ट यू डिस्कवर योर फॉल्ट। आप खुद नहीं ढूंढ सकते तो लोग अपने आप आपको ढूंढ के बता दे कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। आपका कोई काम अटक रहा है, किसी भी परिस्थिति को आप संभल नहीं पा रहे हो, उस परिस्थिति को सामने आप विवश हो जाते हो, समझना कि आप में शक्ति की कमी आई है। और उस वक्त क्या आपको चाहिए वो पहचान के कहीं से भी वो शक्ति प्राप्त करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। एक है कि अगर सशक्त बनना है तो किसी को पूछने से भी मत जी जाओ। किसी से पूछो, किसी से मांग लो, किसी से सलाह, कोई पुराने एग्जाम्पल को रिफर करो, लेकिन अपने आप को आप सशक्त करो। और सशक्तिकरण मतलब मैं बताता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। पुलिस होते हैं, आर्मी ऑफिसर होते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब वो सशक्त हो गए, उनमें सारी काबिलियत आ गई। लेकिन जब उनको फील्ड में जाना होता है, युद्ध में जाना होता है, तो वो अपने साथ बंदूकें, बारूद, हथियार वगैरह लेके जाते हैं। तो आप जहां भी जाओ तो अपना सशक्तिकरण, कौन सी परिस्थिति से आपको निपटना है उस हिसाब से अपने आप को सशक्तिकरण करो। अभी दुर्बुद्धि और अच्छी बुद्धि, एग्जाम में पास होना है तो दुर्बुद्धि कहेगी भाई कॉपी कर ले, पर्ची या जेब में डाल ले, और सद्बुद्धि कहेगी थोड़ा रट ले, थोड़ा समझ ले, थोड़ा शांत मन से तू विचार कर ले और तू पास हो जा। ये सब छोटी बड़ी बात का फर्क है। अभी आप लोग मीडिया वाले हो तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि आपको मीडिया को सशक्त करना है। पहले हुआ करता था मजबूत मीडिया, अब है मजबूर मीडिया। पहले होती थी चौथी जागीर, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि चौथे गुलाम है। कहीं भी आप जाते हो तो आपको बताना पड़ता, भैया मैं पत्रकार हूं। वो आपसे 5 प्रूफ मांगते हैं, आप कहां के हो, कैसे हो, और उसके पल्ले पड़ता है तो वो आपको एंट्री देता है। ये रह गई इज्जत। एंड वैल्यू बेस्ड मीडिया, वैल्यू बेस्ड मीडिया, हमारे मीडिया का जो भी मूल्य है होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में क्या है, 500 रुपये की नोट, 1000 रुपये का वाउचर, 2 या 3 बार खाना पीना, फ्री में नाश्ता, ये वैल्यू रह गई है। तो हम इन सब चीजों को छोड़ के अगर अपने मीडिया को सशक्त करें तो हमारे मीडिया को फिर से हम मजबूत मीडिया कह सकेंगे। अभी दी गई है सिर्फ 7 मिनट, जल्दी से ही खत्म कर दूंगा मैं। ऐसा है कि भगवान की बुद्धि के मुताबिक अगर आपको अपने आप को सशक्त करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़ी धीरज डालनी पड़ेगी, अपने आप को कंट्रोल में करना पड़ेगा, और दूसरी बात के हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत कभी भी नहीं हारना है। अभी ये हमारे पुराने हिंदी फिल्मों में भी ऐसा बताया है कि भी अकेले है तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, अगर आप चाह लो तो तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, तो हिम्मत ना हार। अगर हिम्मत हार गए तो बात खत्म हो गई, और हिम्मत रखे तो हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आज ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इज्जत दी, मुझे सुनने के लिए इतने लोग भी मौजूद हैं, और मुझे रिस्पेक्ट करने के लिए इन लोगों ने जो जहमत उठाई है, उन सबका मैं शुक्रिया करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हिम्मत, धीरज, ये 2 ऐसे शस्त्र आपने दिए जिससे हम अपने जीवन में ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। और कितना अच्छा आपने बताया जो हम सब जानते भी हैं कि अगर हम अपनी हिम्मत रखते हैं तो भगवान की भी मदद हमेशा हमें मिलती है। इस जीवन में हर एक अपने अपने जीवन में अगर कोई पावरफुल कोई बलवान व्यक्ति को अपना साथी बनाता है, कई बार हम लोग देखते हैं हमारे कोई रिलेटिव्स बड़े ऊंचे ओहदे पर होते हैं तो उसका भी हमको एक अपना नशा होता है, एक पावर फील होती है। हम एक दूसरे के साथ कहते भी हैं कोई काम हो तो बता देना, हम उनसे करवा देंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि आत्मा का जो सच्चा साथी है वो परमात्मा है, सुप्रीम पावर है, और अगर उसको हम अपना साथी बना लेते हैं। साथी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हम भगवान को सिर्फ और सिर्फ अपना सहारा समझते हैं। भगवान हमारा दुख सुख का सहारा नहीं है बल्कि हमारे जीवन का सच्चा साथी है। और कहते भी हैं जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। एक बार आप लोग बोलेंगे ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ईश्वर ये प्रज्ञा हम सबको मिलती रहे, ईश्वर का साथ हमारा बना रहे, ऐसी हम आज के दिन इस ज्ञान सरोवर के पावन पवित्र स्थान पर ऐसे शुभ संकल्प करते हैं। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपने अगले सम्माननीय वक्ता को आमंत्रित करना चाहती हूँ, आदरणीय देवी भ्राता मनीष कुमार आहूजा जी। आपका मैं परिचय देना चाहूंगी। वर्तमान में पीलीवंगा से दैनिक भास्कर के संवाददाता हैं आप। इसके अलावा आहूजा एड एजेंसी के आप मालिक भी हैं, स्वामी हैं। विज्ञापन में अच्छी महारत हासिल होने के साथ साथ साप्ताहिक समाचार पत्र मनीष संदेश का भी 2019 से आप संपादन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप 5 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में हैं और वहाँ के सद्भावना भवन के सक्रिय सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र दैनिक इबादत में भी नियमित रूप से आप समाचार लेखन का कार्य करते हैं, एडवोकेट भी हैं। तो जोरदार तालियों से हम मनीष भाई जी को सुनेंगे, उनके अनुभव प्राप्त करेंगे। भ्राता जी,
ओम शांति, ओम शांति। पिछले 3 दिनों से हम मीडिया के इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, बहुत सी बातें सीखने को मिली, बहुत से अच्छे अच्छे वक्ताओं के विचार सुने और साथ ही साथ बाहर के वातावरण में भी अच्छे अच्छे महान भावों ने हमें अपने विचार, जो कि दैनिक जीवन में अपने किस प्रकार कारगर साबित होते हैं वो भी हमें बताए। पत्रकारिता के बारे में आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं मैं, और विषय भी सिर्फ आध्यात्मिकता पर बताया गया है। तो मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के उपरांत आप जैसे ईश्वर की रूहानियत के सभी सच्चे भाइयों और बहनों को मैं इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपने समक्ष बैठे हुए सभी को नमन करता हूं। जैसा कि आध्यात्मिकता में आज का विषय है सेल्फ एम्पावरमेंट विद गॉड्स विजडम, ईश्वर की प्रज्ञा में आत्म सशक्तिकरण। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता हमें एयरलिफ्ट करने का कार्य करती है, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि हम मोबाइल इंटरनेट महंगी कार के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार नवरात्रों में हम प्याज लहसुन या अन्य वस्तुओं के बिना रहते हैं और उसके बाद यदि हम आध्यात्मिकता के तौर पर उन्हें अपने जीवन में अपना लें तो ऐसी चीजें भी हमें कारगर साबित होंगी। एक मैं छोटा सा उदाहरण रहा स्वामी रामकृष्ण जी का देना चाहूंगा। एक बार प्रवचन करते करते वे गंगा नदी के किनारे पर पहुंचे और वहां मंदिर के तट के पास से जहां से नदी गुजरती थी वहां बैठकर वो पूजा अर्चना करने लगे। गांव वालों को पता चला कि हमारे बीच में हमारे गांव के पास में स्वामी रामकृष्ण जी आए हुए हैं, तो उनका स्वागत सत्कार और आतिथ्य देने के लिए वो अपने घर के बुलाने अपने घर पर बुलाने के लिए वो उनके पास पहुंचे। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकता लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं उस घर का पानी तक नहीं स्वीकार करता जिस घर में किसी भी प्रकार का मांसाहार या धूम्रपान आदि होता है। तो गांव वालों ने सोचा कि ऐसा तो कोई घर नहीं है कि जिसमें ये चीज ना हो। 7 दिन निकल गए 8 दिन निकल गए स्वामी जी, फिर उनको गांव वालों के बुजुर्गों को ये लगा कि एक बड़े बहुत स्वामी जी हमारे बीच में आए हुए हैं और उन्हें हम आतिथ्य नहीं दे पा रहे हैं, हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। बड़े बुजुर्गों ने निर्णय लिया, कुछ उनमें से खड़े हुए कि हम आज के बाद में हुक्का पानी जो भी हम किसी भी प्रकार का मांसाहार करते हैं हम उसको त्याग देंगे। उनको देखते हुए गांव वाले भी हुए इकट्ठे और वापिस स्वामी जी के पास जाकर जो शराब या बीड़ी हुक्का था उनके समक्ष रखकर उन्होंने गंगा का संकल्प लिया कि हम आज के बाद में ऐसी किसी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। स्वामी जी को जब यकीन हुआ तो एक आतिथ्य स्वीकार करते हुए उनके घर पे भोजन किया। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति कर लें तो कोई भी हमारा लक्ष्य असंभव नहीं है। आज आध्यात्मिकता के बल पर हम किस प्रकार अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं इस पर भी एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको और बताना चाहूंगा। एक बार एक संत का एक शिष्य था और वो शिष्य उनकी निरंतर सेवा 5 दिन 10 दिन जैसे ही उसके संपर्क में आया गुरु के और उनको कहने लगा कि गुरुजी जिस प्रकार आपके शिष्य हैं क्या मैं भी अपने शिष्यों को शिक्षा दे सकता हूं, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं शिष्यों को शिक्षा दूं। स्वामी जी सुनते रहे, उन्होंने उसे तख्त से नीचे उतारा और खुद उस तख्त पर बैठ गए या उस तख्त पर खड़े हो गए। उन्होंने स्वामी जी ने अब कहा क्या मुझे और ऊंचा उठाओ, क्या मैं आपको ऊंचा और कैसे उठा सकता हूं जब आपने मुझे नीचे उतार दिया। तो इसी प्रकार सबसे पहले हमें खुद को ऊपर उठाना होगा तब हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आध्यात्मिकता हमें यही चीज सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आने वाला है उसको हम किस प्रकार उसको अपना जीवन में बदल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, मैं ज्यादा समय, मुझे समय भी कम मिला है, पहली बार बोलने का मौका मिला है, तो एक छोटा सा उदाहरण। एक मैंने यूनिवर्सिटी का एक प्याऊ बना हुआ था, एक पानी वाला कोल्ड कैंपर का बना, उसकी दीवार पर एक अच्छी कविता एक अच्छी कहानी लिखी हुई थी कि एक बार एक व्यापारी था, उसके पास एक गधा था जिस पर वो दिन भर बोझा ढोता और शाम को उसके साथ ही आराम करता। एक दिन उसका वो गधा था जो एक कुएं में गिर गया। स्वामी को बड़ा दुख हुआ, रोने लगा। आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए कि क्या हुआ, क्या मेरा इतना 20 सालों से मेरी सेवा कर रहा था और ये आज मेरा अति प्रिय गधा इस पे कुएं में गिर गया है जिस वजह से मुझे भविष्य में परेशानी उठानी पड़ेगी, मेरा अति प्रिय था। ग्रामीणों ने समझाया कि चलो अब जो होनी को जो मंजूर था, मालिक को जो अच्छा लगा हुआ, क्यों ना हम अब इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं इसी कुएं में, क्यों बाहर तो निकाल सकते नहीं। तो उन्होंने उसी कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी, लेकिन वो जैसे मिट्टी का बट्ठल उसके ऊपर जाता गधा अपनी पीठ को हिलाकर उस मिट्टी को हटा देता। एक समय ऐसा भी आया कि वो सारी मिट्टी ऊपर 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 आती गई और गधे ने छलांग लाकर बाहर निकल गई। उसी प्रकार हम भी इस दुनिया में अपने बहुत से विकारों से घिरे हुए हैं और आध्यात्मिकता ही हमें इस प्रकार की जो चुनौतियां उससे बाहर निकाल सकती है। तो जोरदार तालियों के साथ मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाइए, जीवन सफल हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जोश और जुनून के साथ आपने बताया कि हम सबको ऊपर उठना होगा और हरेक को खुद को ऊपर उठाना होगा। आज बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन जो मीडिया हमारा क्षेत्र है और जो विशेष रूप से मीडिया में अपनी सेवाएं देते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ। चूंकि हमारे भोपाल में मीडिया की सेवाएं चलती रहती हैं, कई सारे पत्रकार भाई जुड़े हुए हैं। जब भी उनसे मिलते हैं कहते दीदी हमारी तो जीवन ही ऐसी हो गई है, हमारी तो लाइफ ही ऐसी है। तो हमेशा अपने आप को इस तरह से देखते हैं, ना हमारा उठने का ठिकाना है ना सोने का ठिकाना है। कई बार हम देखते हैं कि वो लोग जब बताते हैं कि हम घर जाते हैं तो हमारे बच्चे सोए हुए मिलते हैं और सवेरे जब हम निकलते हैं तो बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, हमारी लाइफ पूरी अस्त व्यस्त रहती है। लेकिन जैसे भाई जी ने बहुत अच्छी बात आज कही कि यहाँ से हम खुद को पहचान कर खुद को थोड़ा समय दें। आज हम सबको समय देते हैं, सबके लिए सब कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, सबके लिए जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को देखें, अपने आप को समय दें और खुद को जब ऊंचा उठाएंगे तो शायद दूसरे भी हमें उस दृष्टि से देखेंगे। और ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है, स्वमान, खुद को स्वमान देना, ऊंचा मान रखना। तो अभी एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा अपना हाथ उठाकर अपने कंधे पर रखेंगे और जोर से बोलेंगे आई एम द बेस्ट। इतने धीरे से, बहुत सारे बैठे हैं अभी तो काफी हैं, बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम हैप्पी। हैप्पी है तो थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, आई एम हैप्पी। वाह, तो हाँ तालियां भी बजा सकते हैं, तालियां बजाना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं तालियों से भी क्या होता है, हाँ जी एक्सरसाइज हो जाती है, खुशियों का संचार भी हो जाता है, दो फायदे। तीसरा फायदा समाज सेवा हो जाती है। समाज सेवा कैसे, आजू बाजू कोई सोते हैं थोड़ा उबासी आती है तो वो भी जाग जाते हैं, तो इसलिए बीच बीच में वो भी आप सहयोग देते रहेंगे। और इन्हीं तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय हमारी देवी बहन रंजीत कौर संधू जी। आप सीनियर रेडियो जर्नलिस्ट एंड फेमस रेडियो एंड टीवी होस्ट हैं। आपको अपने क्षेत्र 18 वर्षों का अनुभव है और कई सारी चैनल से, कई सारी न्यूज एजेंसी से आपने जुड़कर अपनी सेवाएं दी हुई हैं, तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और बहुत ही स्वागत के साथ, भावनाओं के साथ, क्योंकि मंच पर एक आप ही हमारी बहन स्पीकर हैं, तो बहुत एक बार और जोरदार तालियों से हम बहन रंजीत कौर जी का स्वागत करते हैं और उनको सुनेंगे।
मंच पे उपस्थित और जितने भी भाई बहन स्टेज में और इस हॉल में उपस्थित हैं, सभी को मेरा अभिनंदन। ओम शांति, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, जो आज का विषय है उसके बारे में बोलने के लिए ना तो मैं संत हूँ, ना मैं जोगी हूँ, मैं एक साधारण हूँ, इंसान हूँ। सबसे पहले जितना भी मैंने जिंदगी का अब तक अनुभव लिया है वो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अपनी शुरुआत कॉलेज के दिनों से आकाशवाणी जलंधर से की थी, फिर दूरदर्शन के साथ जुड़ी, उसके बाद कनाडा में जितनी भी पंजाबी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं उसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करी। ये बात मैंने इसलिए यहां भी मेंशन करी है क्योंकि मैंने अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसके बाद सेल्फ एम्पावरमेंट आता है। विद गॉड विजडम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी स्टेजेस हैं, उनको पार करना पड़ता है। हम लास्ट वाली स्टेज की बात करने लगते हैं। मैं वो बात करूंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल हमारे साथ घटती है, जो हमारे साथ होता है। मैंने फॉरेन के जो फॉरनर्स थे उनके साथ भी बातचीत करके देखी, और भी अलग अलग स्टेट्स में हम जाते रहते हैं, उन लोगों से भी बातचीत करके देखी। तो ये जो नतीजा मेरे सामने आया वो ये था कि सभी ही इंसान हैं और सभी की जिंदगी में आशा है और निराशा है, और इस निराशा से जीतकर आशा की तरफ जाना ही सेल्फ एम्पावरमेंट है। और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो निराशा क्या है, आशा क्या है, जैसे हम चाहते हैं अगर वो होता जाए तो हमारी जिंदगी स्वर्ग है। अगर हमारे हिसाब से जिंदगी नहीं चल रही, परिस्थितियां लगातार आ रही हैं, तो वो नरक है। इसी चीज को अगर हम समझ लें कि ये परिस्थितियां आना जरूरी है क्योंकि हमारा कर्म है, जब तक हम एक जब मिट्टी का घड़ा बनता है, जब तक वो आग में नहीं जाता, वो तपता नहीं है, वो असली रूप धारण नहीं करता। और अगर हमारी जिंदगी में परिस्थितियां नहीं आती तो हमारी जिंदगी में स्वय अध्ययन नहीं होता। हम एक जगह पर बैठकर नहीं सोचते कि क्या हुआ है, जब परिस्थिति आती है तभी सोचते हैं, तभी चलते हैं मंदिर की तरफ, तभी चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ, चलो कहीं शांति मिल जाए, कहीं आत्मा को शांति मिल जाए। लाखों के वस्त्र पहनकर भी शांति नहीं मिलती जब तक हमारी आत्मा शांत नहीं होती। सबसे अनिवार्य ये है कि हमें जिंदगी में क्लियरेंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारा रास्ता क्या है, हमने जाना किस तरफ है, हमारे अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है। स्वय अध्ययन है, सबसे पहले स्वय अध्ययन है, उसके बाद जाके आपका सेल्फ एम्पावरमेंट आता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस। अब छोटी सी उदाहरण, मेरी आंखें नम हो गई क्योंकि मेरे माताजी चले गए
और जब उन्होंने जाना था मेरे मन में एक भाव आ रहा था बार बार कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। जब वो हो गया तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, इस बात का मुझे पता चला कि ये होना ही था। एक्सेप्टेंस, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो चीज बनी है उसने एक दिन टूटना ही है। ये जो वस्त्र हमने पहना है, जो शरीर हमें मिला है, एक दिन इसने खत्म होना ही है। ये है एक्सेप्टेंस, ये बहुत जरूरी है। पहले सेल्फ एनालिसिस है, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन है, उसके बाद जाकर सेल्फ एम्पावरमेंट है। हमारी गुरबाणी में एक बड़ा महावाक्य आता है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। बहुत जरूरी है खुद को जानना, खुद को पहचानना, उसके लिए ये परिस्थितियां भी बहुत जरूरी हैं। अक्सर किसी भी भाषण में, जो धार्मिक स्थलों पे भाषण होता है, उसमें एक चीज सब में सेम जिसके ऊपर डिस्कशन होता है वो ये है, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको त्याग दो, ये कहा जाता है। लेकिन मैं यहां पे ये कहूंगी कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बैलेंस में और किस तरह जीवन में धारण करना है, यही सेल्फ रियलाइजेशन है, यहीं से सेल्फ एम्पावरमेंट शुरू होती है। अगर ये सब चीजें ना हो तो हमारा संसार ना हो, अगर मोह ना हो तो करुणा रूपी कविताएं ना हो, अगर लोभ ना हो तो न्यू इन्वेंशंस ना हो, डिस्कवरीज ना हो। अहंकार बुरी चीज है लेकिन गौरव बहुत अच्छी चीज है। आई एम इंडियन, इस चीज का हमें गौरव है। सेल्फ एम्पावरमेंट की बात तो बहुत बड़ी है, दूसरों को संभालने की बात तो बहुत ही बड़ी है, खुद को संभालना सबसे बड़ा चैलेंज है। हर परिस्थिति में खुद को संभालना है, हर परिस्थिति में खुद को गिरने नहीं देना है। गुरु नानक साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो हमेशा, क्योंकि मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूं तो वहां गुरुद्वारे में हमेशा मैं सुनती आ रही हूं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा पला। लेकिन इस चीज को रियलाइज मैंने अब किया, चढ़दी कला में कौन रहता है? जो सबका हित सोचता है वही इंसान पॉजिटिव रह सकता है। क्यों ये कहता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप क्यों यहां बैठे, यहां तो मुझे बैठना था, उसमें कभी भी चढ़दी कला नहीं आ सकती, वो कभी भी बी पॉजिटिव नहीं हो सकता। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता जाता है। एक उदाहरण मैं और देती हूं, गुरुद्वारा साहब में सेवा करने को कहा जाता है, लंगर की सेवा, जूते साफ करने की सेवा। जब हम छोटे थे तो मेरे मन में ये विचार आता था, ये जूते क्यों साफ करते हैं, क्या मतलब है जूते साफ करने का, अपने अपने जूते खुद साफ करो, इसमें क्या है। लेकिन बाद में समझ आया कि जब कोई किसी के जूते साफ करता है तो उसके मन का भाव क्या होता है, वो भाव ही सेल्फ एम्पावरमेंट है। जब हम खुद को जीरो मानते हैं, दूसरों को ऊपर उठाते हैं, वो ही सेल्फ एम्पावरमेंट है, उसी से शुरू होता है। स्वयं का अध्ययन, अध्ययन से ही अध्यात्मवाद स्टार्ट होता है, और अध्ययन हमारे जीवन से आज आज की दुनिया में गुम हो चुका है। माफी चाहूंगी मैं, डिजिटल मीडिया एक तरफ अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो बुरा भी कर रहा है। वो ये कि वो लोग जो विद्वान नहीं हैं, जो कच्चा ज्ञान रखते हैं, जब वो ज्ञान देते हैं और जब लोग लेते हैं तो सोसाइटी में बैलेंस नहीं रह जाता, समाज बीमार हो जाता है। समाज को सेहतमंद करना है, सेल्फ एम्पावरमेंट उस दिन होगा जिस दिन हम खुद का अध्ययन करेंगे और परिस्थितियों से गुजरकर उस परमात्मा, वो चाहे निरंकार है, चाहे वाहिगुरु है, चाहे अल्लाह है, किसी भी रूप में, जब हमने ये क्लास बना दी कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये हिंदू है, वो तो पूजा पद्धतियां हैं, अध्यात्मवाद अलग चीज है। खुद को जानना, मेडिटेशन करना, खुद के बारे में अवेयर होना, अपने बारे में जानना, नेगेटिविटी को रिमूव करना, हर चीज को खत्म करना, खुद के बारे में जब जानोगे आप, जब आंखें बंद करके आप बैठोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है, भगवान बताने की जरूरत नहीं है। आपको सेल्फ एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, जब आपके भाव अच्छे हो जाएंगे, जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, जब आप दूसरों के हितों के बारे में सोचने लगोगे तो आपकी सेल्फ एम्पावरमेंट खुद ब खुद आ जाएगी। जाते जाते एक लघु कथा आपके समक्ष रखती हूँ। कोई शिष्य था और उसके गुरु ने ये कहा कि जाओ, बांस की टोकरी थी, इसमें पानी भर के लेके आओ। और बार बार वो कह रहा था कि पानी लेके आओ, और पानी बीच में से निकल रहा था, बार बार निकल रहा था। और वो जो उसका स्टूडेंट था वो ये सोच रहा था कि गुरु ने इस तरह क्यों कहा है, जबकि पानी तो निकल रहा है। और गुरु क्या था, उसकी पेशेंस का टेस्ट ले रहा था। शाम तक क्या है, वो बांस फूल जाता है और पानी भर जाता है। जब हम अपने गुरुजनों पे ऐसा भाव रखेंगे, इस तरह की सोच रखेंगे, तभी हम अपने आप सेल्फ एम्पावर हो जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है, एक छोटा सा अपनी सांस आना और सांस का जाना, यही मंत्र है, यही मेडिटेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ओजस्वी वाणी आपने रखी, तेरे चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। और भला शब्द अगर हम देखते हैं, भला किनका होता है, लाभ किनको होता है? भला का आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। आज सवेरे हम लोग भगवान की वाणी सुन रहे थे, उसमें दीदी बता रहे थे कि घर जब हम खरीदते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं तो शुभ लाभ लिखते हैं, लेकिन लाभ हम बाद में लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, शुभ लिखते हैं। अगर शुभ करेंगे तब जीवन में लाभ होगा, भला करेंगे तब जीवन में लाभ होगा। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम सहन करते हैं तो सहनशाह बनते हैं। कोई भी मंदिर की मूर्ति ऐसे ही मूर्ति नहीं बन जाती, उसको भी बहुत सारे हथौड़े, छेनी और कई सारी ऐसी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही वो पूजनीय और वंदनीय बन सकती हैं। तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच से डॉक्टर विन्नी दीदी जी जाएंगी, वे आप सबसे छुट्टी ले रही हैं, उनको नेक्स्ट प्रोग्राम में जाना है। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सुंदर विचारों की कड़ी को और आगे मैं ले चलती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े ही सम्मान के साथ देवी भ्राता नीतीश विसनलाल जी, आप सब एडिटर सिटी न्यूज अमरावती से हमारे बीच हैं। आप लगभग 19 वर्षों से प्रिंट मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विशेष रूप से राज्य मराठी पत्रकार परिषद के आप प्रेसिडेंट भी हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। ऐसे अनुभवी हमारे आदरणीय नीतीश भाई जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों से हम आपको भी सुनना चाहेंगे भ्राता जी।
ओम शांति। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय दीदी जी, साथ ही वरिष्ठ संपादक, वरिष्ठ मार्गदर्शक, उपस्थित सभी महानुभव, और जो समाज में मूल्य और मीडिया का जतन करते हैं, समाज के ऊपर होने वाले अन्यायों को न्याय की दिशा बताते हैं, जिन लोगों पर अन्याय होता है उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, ऐसे सभी मेरे आदरणीय पत्रकार बंधु, सभी संपादकगण, पहली बार मुझे राष्ट्रीय स्तर का मंच मिला, मैं इसके लिए आदरणीय सोमनाथ भाई जी, आदरणीय हमारे मार्गदर्शक गुरु शंतनु भाई जी, आदरणीय कोमल जी और बीके सभी परिवार की टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कहना ही चाहूंगा कि आज का जो मंत्र है, आज जो टॉपिक दिया गया है, ईश्वरीय प्रज्ञा से आत्म सशक्तिकरण। कहते हैं कि सशक्तिकरण आत्मा कब होता है, इसके लिए बहुत अच्छा मंत्र जो हम सभी को याद है और शायद आप लोग भी घर पर गुनगुनाते होंगे, ओम भूर भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। यह मंत्र जो है ये परमात्मा के अनंत विलीन शक्तियों से बिखरा है और हमें इस मंत्र के माध्यम से एक शक्ति मिलती है। निश्चित रूप से समाज के अंदर हम जब पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। हम लोगों को आज के समय के अंदर हम देखते हैं कि संपादक का बड़ा प्रेशर होता है, संपादक सिर्फ एकमात्र बात करता है, विज्ञापन लाओ। आज पत्रकारिता यह जो है ये मार्केटिंग हो चुकी है और उसका व्यापारीकरण हो चुका है, यह बात झुठलाई नहीं जा सकती है। समाज में हम जिस तरह कार्य कर रहे हैं इसको देखते हुए आत्मज्ञान की आवश्यकता और आत्म सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा हमारी सशक्त होंगी तो हम सात समुंदर पार भी कर सकते हैं। एक मुझे कहानी याद आ रही है कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से हमारी आत्मा सशक्त होती है, और कर्म हमारे अगर अच्छे रहे तो हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं, जीवन की हर परीक्षाओं में हम सफल हो सकते हैं। एक गांव था, एक राजा की रियासत थी, वहां का बादशाह था एक। वह बादशाह पूरे सल्तनत में राज करता था और उस सल्तनत के अंदर एक समुंदर था। उस समुंदर के किनारे रोज उस बादशाह की बेगम जो है वो घूमने के लिए जाया करती थी, और हर रोज सुबह 5 बजे अपनी कनीज, अपनी सब सेवाधारी महिलाओं के साथ में वो बेगम घूमने के लिए जाती थी। और एक दिन क्या हुआ कि वो जो देखिए वो उस जो बादशाह की जो पत्नी थी, वो महारानी ने देखी कि वो एक संत बैठे हैं, एक हजरत बैठे हैं, जो भी बोलेंगे मौलवी बैठे हैं, जो भी बोलेंगे जो धर्म गुरु बैठे हैं, वो समुंदर किनारे रेत का महल बना रहे थे और तोड़ दे रहे थे, रेत का महल बना रहे थे तोड़ दे रहे थे। तो उनकी प्रक्रिया वो निरंतर जारी थी, वो रेत का एक महल बनाते थे फिर तोड़ दिया करते थे। फिर वो कनीज को बोली महारानी ने, बादशाह की पत्नी ने, बेगम ने, कि भाई ये हजरत जी संत क्या कर रहे हैं, आप पूछ के आओ बोले जाकर। तो बोले वो रेत का महल बना रहे हैं और बोले तोड़ दे रहे हैं। बोले फिर उसने जाके पूछी कि भाई ये आप रेत का महल बना रहे हैं और तोड़ दे रहे हैं, आप क्यों तोड़ रहे हैं। बोले मैं ये महल बोले जन्नत में बना रहा हूं, बोले मैं ये महल स्वर्ग में बना रहा हूं, बोले आप खरीदना चाहोगे। बोले कनीज जाके बोलती है महारानी को कि हाँ ये महल हमारी महारानी, हमारी बेगम, बादशाह की जो बेगम है इस सल्तनत की, वो खरीदना चाहती है। बोलिए। बोले कितने में देंगे। बोले बोले सोने की 5 अशरफिया लूंगा। बोले कनीज को बोलती महारानी बेगम सोने की 5 अशरफिया दे दो। बोले हजरत जी को हम ये महल लेने के लिए तैयार है। बोले सोने की 5 अशरफिया दे देती और वो महल बोले तोड़ो मत इसको, बोले सुरक्षित रहने दो, अगला महल बनाओ बोले आप। दूसरा दिन निकलता है, सुबह सुबह उस सल्तनत के बादशाह को बशारत होती है, हमारी भाषा में सपना कहेंगे हम उसे। तो सपने में उसको दिखता है कि मेरी बेगम का जो महल है वो कहां बन गया, जन्नत में बन गया। और वो सुबह सुबह अपनी बेगम को बोलता है कि भाई मुझे बशारत हुई, मुझे सपना हुआ कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, आपको जन्नत नसीब होने वाली है करके। तो वो बेगम बताती अपने शोहर को कि बादशाह मैं सुबह सुबह समुन्द्र किनारे गई थी और वहां देखा मैंने कि एक हजरत जो है, एक बैठे एक संत जो है, वो महल बना रहे थे और तोड़ दे रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि भाई मुझे महल खरीदना है, तो उन्होंने सोने की 5 अशरफी में मुझे महल दे दिया। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे भी ये महल चाहिए। तो उनके भी महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती कि मुझे भी ये महल खरीदना है। तो अपने पूरी सल्तनत के साथ में, घोड़े पूरे सैनिकों के साथ में वो जाते हैं समुन्द्र किनारे और वहां जाकर देखते हैं कि वो जो हजरत, वो जो संत बैठे रहते हैं, वो वही कृत्य कर रहे हैं निरंतर रूप से जो प्रतिदिन वो किया करते थे। वो महल बना रहे हैं रेत का और तोड़ दिया कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं जाके, वो बोलते हैं कि वहां के सेनापति उतरते हैं घोड़े से और वो पूरे रुबाब के साथ जाते हैं उस संत के पास में कि मुझे बादशाह ने भेजा है, ये जो महल है आप ये तोड़िए मत, ये हमारे बादशाह को खरीदना है। तो संत हजरत क्या कहते हैं, बोले ये बेचने का नहीं है, बोले ये बादशाह को बेचना नहीं है। बोले तो वो सब लोग उतर जाते हैं, अरे बादशाह को बेचना नहीं है, बादशाह का अपमान हो रहा है, बादशाह की बेइज्जती हो रही है, क्यों नहीं बेचना है। तो उनके मंत्री संतरी सब लोग जाते हैं, बोले आप सोच सकते हैं, बोले इसकी सजा आपको क्या मिल सकती है, आपके ऊपर 100 कोड़े बरसाए जा सकते हैं। बोले बोले संत बोलते, वो हजरत बोलते बिल्कुल बरसा दो, बोले लेकिन महल इसको बेचना ही नहीं है। बोले आखिर बादशाह परेशान हो जाते, बादशाह अपने हाथी पे से उतर के आते और बोलते भाई आपको बोले मैं सोने से, हीरे से, जवाहरात से तोल देता हूं, बोले आप एक काम कीजिए, बोले मुझे ये महल दे दीजिए, बोले जन्नत में। नहीं बोले आपको बेचना ही नहीं है बोले। संत अहलिया जो रहते वो थोड़े पागल रहते हैं ना, उनका जो नहीं बोले तो नहीं। आखिर वो पछता कर ये बोलता बादशाह कि भाई एक काम करो बोले, इनकी गर्दन काट दो बोले तलवार से, काट दो बोले। वो बैठ जाता नीचे घुटने के बल संत जो है। आखिर वो संत जो है बोलते आप मेरी गर्दन कलम कर दो लेकिन मैं आपको महल नहीं बेचूंगा। लेकिन आखिरकार सबसे बड़ा जो हथियार होता है जीवन में वो रहता है क्षमा। क्षमा प्रार्थी होकर उस वह बादशाह उस संत के सामने, उस धर्मगुरु के सामने दोनों घुटने पर आकर बोलते हैं कि मेरी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए आप, लेकिन आप ये महल मुझे दे दीजिए। आखिर वो जो संत है वो बोलते मैं एक शर्त पे आपको दूंगा। बोले आपकी पूरी सल्तनत मेरी, आपकी पूरी सल्तनत मेरी और ये महल आपका। तो बादशाह सवाल पूछते हैं कि आपने मेरी पूरी सल्तनत ले ली और मेरी पत्नी को केवल 5 सोने के अशर्फे में आपने महल दिया, तो आखिर ऐसा क्यों? तो देख बादशाह को बोलते वो संत, आपकी जो बेगम थी, आपकी जो पत्नी थी, वो समुन्द्र किनारे घूमने को आई थी, उसने देखी कि मैं रेत का महल बना रहा हूं और रेत का महल जन्नत में है और मैं वो बेच रहा हूं। उसने बिना देखे जन्नत में जो महल बन रहा है वो 5 सोने के अशर्फियों में ले ली, लेकिन तू देख के ले रहा, इसलिए तेरी पूरी सल्तनत मेरी और जन्नत में महल तेरा। इसलिए इंसान जो जीवन में कर्म करता है, जो इंसान देखकर कर्म करता है, उस कर्म के लिए माफी नहीं है। जो अनजाने में कर्म हो जाते हैं, जो बिना देखे कर्म हो जाते हैं, उसके लिए माफी है। और आध्यात्म हमको ये सिखाता है कि आध्यात्मिक शिक्षा देता है कि हम जो कर्म करते हैं, हम जीवन में अच्छे कर्म करो। हमारा जो मोक्ष की प्राप्ति है वो अच्छे कर्मों के माध्यम से होने वाली है। मीडिया जगत में कार्य करते हुए हमें झूठ बोलना पड़ता है, हम फरेबी है, हम ये बात मानते हैं। बिना झूठ के दुनिया नहीं चलती है। पत्रकारिता क्षेत्र में या अगर जो भी व्यक्ति बैठा है उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। हम रावणों के बारे में समाचार डालते हैं, हम विभीषणों के बारे में समाचार डालते हैं, हम प्रभु श्री राम के बारे में समाचार नहीं डाल सकते, क्योंकि एकमात्र पूरे विश्व के अंदर एकमात्र अगर कोई राजा है जिनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लगता है, वो प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देवत है। और श्री राम के हम वंशज है, गीता ही हमारी गाथा है। और छाती ठोक कर कहता हूं भारती मेरी माता है, भारती मेरी माता है। एक अंतिम शब्दों से मैं विराम दूंगा मेरे शब्दों को। बहुत अच्छे पल यहां पर ब्रह्म कुमारीज में मिले। पिछले 17 वर्षों से मैं यहां पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में आता हूं और यहां पर ज्ञान सरोवर में जो ज्ञान मिलता है, निश्चित रूप से 365 दिन ऊर्जावान हम बने रहते हैं। एक अंतिम शब्द मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि ये सुनहरे पल है और बार बार ब्रह्म कुमारीज की ये संस्था सुनहरे पल हमारे जीवन में लाते रहे। इरादे हो जिनके पक्के वो आगे बढ़ते जाते हैं, टकराते हैं जो तूफान से वो मंजिलों को पाते हैं, और पसीने की हर एक बूंद से भाग्य जो अपना लिखते हैं, समय उनके साथ होता है, सुनहरे पलों पाते हैं, सुनहरे पलों पाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
बहुत 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 धन्यवाद। और आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात की। श्री राम ऐसे ही राम जी नहीं बन गए, उन्होंने अपनी मर्यादाओं का, अपने माता पिता का, अपनी संस्कृति का निर्वहन किया। और कहते हैं राम बन गए तो बन गए, श्री राम जी बन गए तो बन गए। हमें भी अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग करना होगा। जो भी हमारे ऐसे संस्कार हैं या ऐसे जो कुछ स्वभाव हैं जो हमारे जीवन में थोड़ी बाधा डालते हैं, रोड़ा बनते हैं, हमारी ईश्वरीय प्रज्ञा को बढ़ाने में अवरोध पैदा करते हैं, ऐसे संस्कारों को खत्म करके अपने आप को पहचान कर अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जाने। देखिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, बताई जाती है कि प्रेम, शांति, दया, करुणा, खुशी, आनंद, जो भी है सब कुछ आपके अंदर ही निहित है, ये आपके अंदर ही समाहित है। बस आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट करना है, फिर देखिए आपकी शक्तियां कैसे जागृत होंगी और आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में सामने आएंगे। और अभी मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगी, आदरणीय देवी भ्राता श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव जी। आप हमारे बीच संबलपुर से पहुंचे हैं, पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय विकलंगा संदेश में क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऑल इंडिया ऑल ओडिशा स्मॉल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन के आप संयोजक भी हैं, मानवाधिकार संरक्षण संगठन के सदस्य हैं। इसके अलावा आप पिछले 10 वर्षों से पश्चिमी ओडिशा में मिलिट ओडिशा निशा निवारण अभियान और शराबबंदी अभियान के द्वारा संयोजक के रूप में सेवा कर रहे हैं। आपको 2018 में आपकी पूरे संगठन को प्रेसिडेंट द्वारा अवार्ड भी प्राप्त है, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी और कहूंगी कि आप अपने आज के इस विषय पर अपने विचार रखें कि कैसे हम ईश्वरीय प्रज्ञा प्राप्त करके आत्म सशक्तिकरण कर सकते हैं, आत्मा की शक्तियों को पहचान सकते हैं। भ्राता संदीप कुमार श्रीवास्तव जी।
Here presented all my brother, sister and honorable speaker of media and BK brother and sister, सभी को मेरा नमस्कार एंड हार्दिक अभिनंदन। और मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, मीडिया प्ले वाइटल रोल फॉर द सोसाइटी, मीडिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल सोसाइटी बाय द providing information, influencing an attitude and behavior and potentially impacting the suicide ratio also. Media play the role of mirror in society and acting as a bridge between the government and people, conveying information and influencing an attitude. मैं हाउ टू कुछ एक एग्जाम्पल के तहत एक इंसिडेंट के थ्रू मैं एक हाउ टू सेल्फ डिफेंस मीडिया पर्सन थ्रू द फ्रॉड केसेस एंड आई वांट टू एक्सप्लेन थ्रू द वन इंसिडेंट। रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मैंने भी मीडिया में करीब 15 साल से काम किया है, तो हमने और ब्रह्म कुमारी से 2015 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये पिछले साल का एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरे साथ हुआ था। 12 अप्रैल 2023 में एक हनुमान जयंती के दिन एक वहाँ की जो बजरंग दल और वहाँ के जो हनुमान मंदिर के जो संयोजक हैं उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि 300 से 400 लोगों ने एक बाइक रैली ये किया। उसका ऑलरेडी उन्होंने सारा परमिशन भी लिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और वो रैली जो है उसको मैं हैंडशेक करके मैं दिल्ली वहाँ जो लोकल सेंटर है वहाँ पर मेडिटेशन करने जाता हूँ। तो मैं 6:30 बजे वो लोग निकल रहे थे, उनके साथ हैंडशेक करके मैं बोला मैं 7:30 बजे आता हूँ, आप लोग एक रैली कंप्लीटेड हो जाएगा तो हम एक वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग और आरती होने वाली थी। तो मैं जब 7:30 बजे सेंटर से निकला तो मैंने देखा कि वहाँ चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है और मैं बहुत मुश्किल से मैं घर जा पाया। और रीजन क्या हुआ कि जब वो रैली जा रही थी एक सेंसिटिव एरिया है जो मुस्लिम एरियाज है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बेल प्लानिंग के तहत वहाँ पे ट्रैक्टर वो उन्होंने छत के ऊपर में पत्थर रखे हुए थे। जब वो रैली वहाँ से क्रॉस कर रही थी तो करीब 100 के आसपास लोगों ने पत्थर उनके ऊपर फेंके, जिसमें 5 डेथ हुई थी और उसमें करीब 15 से 20 लोग इंजर्ड हुए थे। तो ये चीज मुझे बहुत हर्ट किया, जब मैं मेडिटेशन से आया और मैं जब घर पहुंचा तो मुझे बहुत हर्ट किया। मैं वो उस मंदिर जहाँ पे हमारी प्रोग्राम थी वहां भी नहीं जा सका, तो मैं उस दिन नहीं सोया और उस दिन मैंने 7-8 पिटीशन लिखा था। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गवर्नर, ऐसे बहुत सारे पिटीशन मैंने रात को, और मेरे जो टाइपिस्ट है उसको भी मैं बोला कि आज हमने कुछ करना है। तो मैंने करीब 8 से 10 पिटीशन और सुबह हमारे जो रिपोर्टर्स भाई हैं उनको मैंने बोला कि आपका ड्यूटी है हर एक रिपोर्टर को 30 से 50 लोगों से सिग्नेचर लाना है। तो मैंने 8-10 वो पिटीशन तैयार करके और सबकी 8-8 कॉपी थी तो दे दिया। उन्होंने सारे करीब 4-5 घंटे के अंदर में सिग्नेचर कंपेनिंग करके ले आए। उसके बाद मैंने उसको उस दिन जो है नेट चालू था, उसके इवनिंग में ही नेट बंद हो गया था। वहां पे 2 महीने तक नेट और कर्फ्यू लगा हुआ था। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था उड़ीसा में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सारे मेल से मैंने सबको पोस्ट कर दिया और 7 डेज के बाद में एक पीएमओ से मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया था कि हाईली इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि वो रूट जो था वो परमिसेबल रूट था। ये रैली वहां से जाने के लिए ऑलरेडी 1 महीने पहले से परमिशन लिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन से। ये एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलवर है तो इसके ऊपर में जो है एक हाईली इंक्वायरी होना चाहिए इंडिविजुअली और सेंट्रल एजेंसी से इसको करना चाहिए। तो उसके ऊपर में पीएमओ ने एक इंक्वायरी के लिए जो है सीएमओ को लिखा था कि इसके ऊपर में एक इंक्वायरी और हमको एक स्टेटस रिपोर्ट दो। तो उसके पास वहां के जो एसपी साहब हैं उन्होंने जब उनके पास वो मेरी पिटीशन उनके पास पहुंची जो प्राइम मिनिस्टर से आई थी जो सीएमओ ने भेजा था तो उस लेटर हेड पे सामने में मेरा नाम लिखा हुआ था, पीछे 300 लोगों की सिग्नेचर थी। तो उन्होंने इमिडिएटली मेरे ऊपर में एक एफआईआर लॉन्च की जिसमें कि 19 धाराएं लगी थी और देशद्रोह का मामला उन्होंने दर्ज किया मेरे अगेंस्ट में। और जिस दिन मुझे अरेस्ट करने वाले थे तो मुझे 2 घंटे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई थी। तो मैंने मेरी जो लीगल टीम है, मैं एक एसोसिएशन के तहत हमारे पास लीगल टीम है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला था इमीडिएटली यू लीव फ्रॉम योर सिटी। तो उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, आप कार लेके जा नहीं सकते हैं, सब जगह पे नाकाबंदी की हुई थी। तो मैंने एक अपना आईक्यू ये किया और मैं एक्टिवा से गली वाले रास्ते से, जैसे जो गांव के अंदर गली सब होती है ना, तो वहां से ऐसे करके मैं वहां से 60 किलोमीटर डिस्टेंस चला गया। उसके बाद में वहां एक मित्र थे लॉयर्स, उनके घर में मैं स्टे किया और सेकेंड डे एक ट्रेन से मैं हाईकोर्ट कटक हाईकोर्ट के लिए मैं पहुंचा। और हमारी जो टीम थी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट से अपॉइंटमेंट ले रखा था कि हमें आपसे बात करना है इस मैटर पे। तो उस दिन चीफ जस्टिस एक डिविजनल बेंच की हियरिंग चल रही थी तो उन्होंने हमको टाइम नहीं दिया, लेकिन एक सुप्रीमटेंडेंट ऑफ हाईकोर्ट को अपॉइंट किया था इस मैटर को हियरिंग करने, हमारे साथ डेलीगेशन से बात करने के लिए। तो मैंने अपना सारा जो एविडेंस था मैंने उनको शो किया कि मैंने ये एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को बेल विशेष के लिए मैंने काम किया, ये मेरा पर्सनल वर्क नहीं है। और ये मुझे किस तरह से सुप्रीमटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मेरे ऊपर में एफआईआर लॉन्च करके और मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट भी इशू कर चुका है। तो सुप्रीमटेंडेंट ऑफ हाईकोर्ट इसको सेंसिटिव मैटर लेते हुए उन्होंने इमीडिएटली इस मेरे मैटर को 3 नंबर कोर्ट में, वहां पे जस्टिस केआर महापात्रो जी बैठे हुए थे, उनके पास रिफर कर दिया, मेल कर दिया और बोला दिस इज ओवर एक्शन ऑफ द पुलिस, सुप्रीमटेंडेंट ऑफ पुलिस, वर्डिक्ट इज नीडेड, अर्जेंट वर्डिक्ट इज नीडेड, बोल के उन्होंने मेल कर दिया। और उन्होंने बोला कि आप 3 नंबर कोर्ट में चले जाइए, उनसे कंसल्ट कर लीजिए, आपकी हियरिंग आज ही हो जाएगी विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज। तो हमारे हम जब वहां जाके वहां के जो क्लर्क थे, हेड क्लर्क, उनको पूछा कि हमारी ऐसी सी बात है तो बोले आपका मेल हमारे पास आ चुका है और आपका जो मैटर हमने टेक ओवर कर लिया है, 3 बजे आप आ जाइए लंच के बाद और आपकी हियरिंग हो जाएगी। तो जब हमने जस्टिस के सामने सारा एविडेंसेस रख दिया तो जस्टिस ने जो डिफेंट लॉयर जो एसपी के बिहाफ ऑफ एसपी जो गवर्नमेंट लॉयर थे तो उनको पूछा जस्टिस ने डिफाइन द ड्यूटी ऑफ सुप्रीमटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उन्होंने बोला कि ड्यूटी ऑफ सुप्रीमटेंडेंट ऑफ पुलिस इज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ओवर एक्शन ऑफ द पुलिस, विलेजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट नॉट सफरिंग। फिर उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल दिए जिसके कि जस्टिस ने उनको वार्न किया, उनको वार्निंग दिया, बोला यू टेल मी दिस एक्शन इज ओवर एक्शन और नॉट अगेंस्ट द मिस्टर संदीप श्रीवास्तव। तो जब उन्होंने उंगली उठा के ऐसे बोला जस्टिस ने तो वो जो गवर्नमेंट लॉयर थे उनको समझ में आ गया कि मैटर क्या है। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला दिस एक्शन इज ओवर एक्शन, आई एडमिटेड। तो जस्टिस ने बोला शट डाउन और उसके बाद उन्होंने वर्डिक्ट पास किया और उसमें लिखा उन्होंने कि दिस पुलिस एक्शन इज इलीगल, नॉन मेंटेनेबल, हेंस इफ नीड एनी इंक्वायरी मिस्टर संदीप श्रीवास्तव शुड टेक अ परमिशन ऑफ कंसर्न हाईकोर्ट, शुड नॉट बी अरेस्टेड। और ये जब ये ऑर्डर होने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। फिर मैंने जाकर के वो जिस सुप्रीमटेंडेंट हाईकोर्ट ने मुझे भेजा था उनको थैंकिंग करने के लिए स्वीट बॉक्स लेके गया था, जिसके लिए उन्होंने मुझे डांटा, बोला कि ये मैंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, मैंने अपनी ड्यूटी किया है, इसके लिए मुझे किसी तरह का कोई गिफ्ट का जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला सर मैं एक मेरा हैप्पीनेस को ये करने के लिए ये मैंने लाया है और मैं कुछ ये नहीं। तो बोले और क्या आप चाहते हो हमसे। तो मैंने बोला सर अगर आपकी वेबसाइट से इस ऑर्डर को अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को अगर आप सेंड कर देते हैं तो मैं 2-3 दिन मेरा बच जाएगा और मुझे सर्टिफाइड कॉपी लेना नहीं पड़ेगा। तो बोला ठीक है हम कर देते हैं। फिर तुरंत कलर को बुलाया, बोले पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड करके लाओ प्रिंट करके, और उन्होंने साइन करके उसमें सीएमओ पीएमओ और होम सेक्रेटरी और एसपी डीजी और डीआईजी को सारा मेल कर दिया। और उसके 3 दिन के बाद में वो एडिशनल एसपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्होंने मुझे फोन किया, बोला आपकी एफआईआर हमने ड्रॉप कर दी है। और उसके 7 डेज के बाद मैंने देखा कि उस एसपी का भी ट्रांसफर हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो काम करते हैं पब्लिक सोसाइटी में, जो पब्लिक की वॉइस को रेज करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस आते हैं, कभी कभी हम लोग भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्योंकि इसके पहले मैं निशा निवारण का काम कर रहा था तो उसके लिए मुझे 100 FIR फाइल्स एफआईआर हुई थी और वो सारी एफआईआर स्क्रैप हो चुकी है ऑलरेडी, सारा हमने क्वास आउट कर दिया है। तो थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस था इस चीज का कि इस तरह से पुलिस केसेस फॉल्स। तो आप लोगों को भी कभी अगर इस तरह की फॉल्स केसेस होती है तो आपने डायरेक्ट प्रोसेस में नहीं जाना है, डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर कोई छोटी धारा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेल कीजिए, मेल के थ्रू से बात कीजिए, या बड़ी धारा में लगा है तो फिर आप हाईकोर्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट के पास पूरा पावर होता है, एटलीस्ट वो मर्डर की धारा को भी, मर्डर के सेक्शन को भी वो क्रॉस आउट कर सकता है, हाईकोर्ट के पास एक्सट्रीम पावर होता है। तो इस तरह से हम लोगों को अपना सेल्फ डिफेंस भी करना चाहिए और ये चीज हमको जानना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे बताने के लिए जो है, क्योंकि यहाँ तो आज का मैटर कुछ और था। और मैं एक कविता बोल करके मैं अपनी वाणी को खत्म कर दूंगा, समय कम है, मुझे 3 मिनट का ही समय दिया था। तो आज मैं एक कविता बोलने जा रहा हूं। आज तू बिखरता है एक रोज तू खिलेगा, ढलता जो आज सूरज कल सुबह फिर निकलेगा। माना मंजिल मुश्किल है इन लोहों के जंजीरों में, पर तू तपेगा तब तेरी तपन से लोहा पिघलेगा। माना आज तू बिखरा है कल फिर निकलेगा। ढला है आज सूरज कल सुबह निकलेगा। आवाज़ विपरीत क्यों ना चले पर तू कदम पे कदम आगे बढ़ाते चल। तुझे मुझे है कल के लिए तैयार होना, जो आज तू बिखरे आज तू गिरेगा। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख एक रोज बदलेगा। माना आज तू बिखरा है एक रोज तू निकलेगा। ढला सूरज जो आज कल फिर से निकलेगा। और मैं खाली एक बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है वो एक मड के समान है, एक मट्टी का गमला है। तो हम जब शाम को सोते हैं, सोने के 2-3 मिनट 5 मिनट पहले कुछ अच्छे थॉट्स को डालना है। जो थॉट्स होता है वो सीड का काम करता है ब्रेन के अंदर में। जो हम थॉट्स इवनिंग में डालते हैं बिफोर स्लीप और जब हम वेकअप करते हैं सुबह उठते हैं, तो उस समय में कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन 5 मिनट 10 मिनट अगर डालते हैं और आपका जो भी डीमेन एमएन ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप ब्रेन के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं तो वो ब्रेन क्या है वो फंक्शनल हो जाता है। ये यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ है और वो फंक्शनल हो जाता है और वो जो आपका अचीवमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है। ये यूनिवर्स ने मैं और ये मैंने भी बहुत सारी जो रिसर्च किया है इसमें देखा है। और इतना कह करके मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समय की सीमा है, मेडिटेशन के लिए भी हम सबको आगे बढ़ना है। आज बहुत अच्छा मास मेडिटेशन रखा गया है और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय देवी भ्राता रमेश चंद्र दास जी, डीजीएम एचआरडी एंड एडमिनिस्ट्रेशन नालको भुवनेश्वर से हमारे बीच पहुंचे हैं। वर्तमान में ओडिशा उच्च न्यायालय के आप अधिवक्ता भी हैं और ओडिशा के आदिवासी बहुल जिले कोरापुट में समाज सेवा में आप विशेष रूप से सक्रिय हैं और एक एनजीओ एचएच इंटरनेशनल के आप फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। आप विशेष रूप से श्रम और प्रबंधन कानून सलाहकार भी हैं और वर्तमान में ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में प्रिंट और अन्य मीडिया के माध्यम से सामाजिक संगठन में शामिल होकर आदिवासी लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आप विशेष रूप से प्रयासरत हैं। आप प्रशिक्षक हैं, प्रशासक हैं, परामर्शदाता हैं और अनेक आत्माओं के लिए प्रेरक हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, हम भी गागर में सागर भरते हुए आपके विचार सुनना चाहेंगे भ्राता जी।
ओम शांति, ओम शांति। रिस्पेक्टेड सीनियर राजयोगिनी जी इन दी डैश, माय ऑनरेबल स्पीकर्स एंड माय एस्टीम्ड मीडिया फ्रेंड्स in my front and all other brothers and sisters of Brahma Kumaris. I feel myself privileged to be among all of you in this August gathering. For that, I give my special thanks to our Brahma Kumari Institute, especially Santanu Bhai, who has made it happen. Today's topic is God's wisdom in our self-empowerment. It is not a new topic in my view. From the day India got its independence, prior to that, we know Swami Vivekanand, who had made our country proud, and he had a one word, know yourself. Know yourself, who are you? What is within yours? So with this, I will go to the topic. Today's topic is self-exploration and odyssey into the depths of self-discovery, resilience and spiritual empowerment. Our voyage is guided by the beacon of self-empowerment, a concept that resonates deeply in the fabrics of human experience, offering us a pathway to navigate life's turbulent seas with confidence, purpose and agency. Here I break. When I came to Mount Abu, I find perhaps our Prajapita Brahma Kumaris is the only spiritual institution in the whole of the world who is taking care of empowering every body, every section of the society, every category of the society in all arts like communication, motivation, leadership, team building, and whatever wants are being guided, controlled in this hall of God's wisdom. So, as we set sail on this journey, let us first anchor ourselves in the understanding of self-empowerment, a belief, our innate ability to shape our destinies, influence outcomes, and transcend the challenges that lie in our path. It is a belief that encompasses the cognitive, emotional, behavioral and social emotions of our being, igniting flames of resilience, courage and determination within us. Dear friends, today we find our country is rapidly moving and our mantra today is we will be Vishwa Guru. In this Vishwa Guru concept, when we go, we find lot of challenges before our political leaders and before our administrators. They are confronted with, deal with diverse, complicated, competitive and often very contradictory situations, experiencing very socio-political pressures. Under such circumstances, delivering results becomes incredibly challenging. However, with a strong spiritual mindset, administrators can overcome these pressures and make appropriate decisions for the betterment of society. The role of spirituality in self-development cannot be overstated. Spirituality serves as a vital tool for individuals to connect with their inner selves, fostering a profound sense of space, purpose and direction. By engaging in spiritual practices, individuals embark on journey of self-reflection. This introspectiveness process cultivates greater self-awareness, allowing individuals to understand their thoughts, emotions, behaviors more deeply. Self-reflection reveals areas of personal strength and aspects needing growth, paving the way for international change and personal growth. Moreover, spirituality nurtures resilience. Life is replete with challenges, and strong spiritual foundations provides individuals with the fortitude to navigate these difficulties with the grace of composure. Practically, if we tell, as I told, here all sorts of self-empowerment is being given. And what we see here, from the morning at 4:30 a.m., we are going for meditation. We may call it meditation, yoga, pranayama, or silence, or our devotion to God. All these self-empowerment principles are being taught to us, and I believe this is the best institute, best place, which is giving, nurturing our talents, our skills, and taking us in the way where we can discover within ourselves what competence we have. In my 35 years of service, I have dealt with many troublesome areas in totally tribal dominated area where people do not know, read, write anything. I got self-empowerment concept. First I sent them to this ORC. The people came to the totally drunken condition, and when they went back, they were totally free for 3 months. And there comes the role of media. I will request my friends, in media, I have read in management language, there is a word, KFP, BFP. I think some of my friends will say, KFP, BFP. Kya farak padega? Bahut farak padega. We are the people in media. We are the agent of a change. We are the communicators, as has been narrated in the last 3 days. We are the predecessors of Maharshi Narad, who was reaching people with his sweet voice, with right approach, with right intention, and making everything happy. So, when media tries, they can translate a good person to a bad person, from a bad person to a good person. And at that time I had seen the media had played a role. They had highlighted very highly that Brahma Kumaris is an institute. If we go there, we can definitely change our attitude and habits. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब. और आज का जो विषय है, वास्तव में हम सबको आत्म सशक्तिकरण की ओर ले जाता है. और विशेष रूप से जो हमारे मीडिया के भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया कर्मियों का कर्तव्य है कि स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से संपन्न कर अपने अंतर मन को इतना मजबूत बना लें कि किसी भी लगाव, झुकाव या दबाव वाली परिस्थिति का सामना कर हम आध्यात्मिक संचार के साधनों से समाज में सकारात्मकता को लाने का वातावरण बना सकें, ये सेवा कर सकें और अन्य लोगों का भी उज्जवल भाग्य और भविष्य बना सकें एवं एक नए भारत के निर्माण में, एक स्वर्णिम भारत के निर्माण में भागीदार बन सकें. और इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, क्योंकि अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं राजयोग की ओर. मैं कहना चाहूंगी कि आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो. आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो. बाकी दुनिया की बातों में रखा क्या है. सद विचारों के सागर का मंथन करो, पी लो अमृत, बना लो ये जीवन नया. मीडिया में आध्यात्म का समन्वय करो, मीडिया में आध्यात्म का समन्वय करो, आप मिलकर बना दो ये नया भारत. देख लो ये सुंदर प्रभु का परिवार, इसके कण कण में है सेवा का संचार. यहाँ आप आए देख रहे हैं सेवा का संचार, आप आए यहाँ ये है सौभाग्य. भारत की मीडिया का ये है बदलाव. शिव से शक्ति भरो, सशक्त बनो, यही ईश्वरीय प्रज्ञा की है पहचान, यही है ईश्वरीय प्रज्ञा की पहचान। और ईश्वरीय प्रज्ञा कैसे हम अपने अंदर भर सकते हैं? आज अनुभव के आधार से प्रैक्टिस कराएंगी आदरणीय हमारी बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर कहें, राजयोगा ट्रेनर कहें, और इस मीडिया सेवा प्रभाग की मुख्यालय कोऑर्डिनेटर हमारी बहुत ही शांत मना, सरल और सहज स्वभाव की धनी, ज्ञान की धनी ब्रह्मा कुमारी चंदा बहन जी, जो हमारे बीच उपस्थित हैं और इतने शांत भाव से सबका सुन रहे हैं, और अब सभी का सुनकर सार की ओर हम सबको ले जाएंगी, परमात्मा से हम सबको जोड़ेंगी। आपका पिछले 30 वर्षों का, आप उसके लिए तालियां बजा सकते हैं। हमारी चंदा बहन जी पिछले 30 वर्षों से लगातार राजयोग का अभ्यास कर भी रहे हैं और अनेक आत्माओं को करा भी रहे हैं, देश क्या विदेश में भी, कई देशों में आपने कई सेमिनार, सम्मेलन, संवाद, रिट्रीट, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित की हैं और वहां अपना अनुभव शेयर किया है। कई बाहर के देश, यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल आदि में भी आपकी आध्यात्मिक यात्राएं रही हैं। तो अभी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कुछ पलों के लिए अपने अनुभव के साथ हम सबको मेडिटेशन का अभ्यास कराएं आदरणीय राजयोगिनी चंदा बहन जी।
ओम शांति। समस्त सृष्टि में आप देखेंगे रोज सूर्य प्रकाशित होता है और सृष्टि में सभी सोलर एनर्जी को अपनी अपनी तरीके से यूज करते हैं, लेकिन उसी सोलर एनर्जी को जब हम कॉन्वेक्स लेंस पर फोकस करते हैं तो पावर बन जाती है। इसी प्रकार मैं एक आत्मा हूं, जीवन ऊर्जा हूं, गॉड्स विजडम यही कहती है कि आप एक चैतन्य शक्ति हैं, मैं लाइफ एनर्जी हूं, और हम आत्मा ये एनर्जी रेडिएट करते हैं अपने थॉट्स से, अपनी फीलिंग्स, अपने वर्ड्स और अपना व्यवहार। इसलिए कहा जाता है हम सबके पास चार पावर्स हैं, दो आउटर हैं, दो इनर हैं। आउटर दिखाई देती हैं, वो है स्पीकिंग एंड बिहेविंग, आप सुन सकते हैं शब्द और व्यवहार देख सकते हैं लोगों का। दो इनर पावर्स हैं, वो है थिंकिंग एंड फीलिंग, किसी के विचार और फीलिंग वो दिखाई नहीं देते। और ईश्वरीय प्रज्ञा ये कहती है कि अपनी थिंकिंग, फीलिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग, इन चार पावर से आप अपने आउटर वर्ल्ड का क्रिएट करें। आउटर वर्ल्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप चाहें, और उस आउटर वर्ल्ड में चार बातें हैं, पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस। लेकिन वर्तमान समय में हम सबके मुख से यही सुनते हैं, स्वयं भी कहते हैं कि क्या करें, इस व्यक्ति की वजह से मैंने ऐसा कहा, इस परिस्थिति की वजह से मैंने ऐसा किया। तो हमारी जो पावर है वो आउटर वर्ल्ड में जो बातें उस पर डिपेंड हो गई है। अब सक्सेस इसलिए डिफरेंट है, एक बच्चे ने बलून सेलर से पूछा, अंकल अंकल ये काला बलून भी उड़ेगा? बलून सेलर ने कहा, हाँ बेटा, क्योंकि बलून कलर से नहीं उड़ता, उसके अंदर हीलियम गैस, उससे, उसकी पावर से। इसी प्रकार हम सब आत्मा हैं, ह्यूमन एनर्जी हैं, लाइफ एनर्जी हैं, और हम सबके पास कॉस्ट्यूम है, सबके पास यह देह है, दो आंख, दो हाथ, दो पैर, लेकिन फिर भी सबकी सक्सेस में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि पावर, इनर पावर, तो हम सब में वो पावर है, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, बिहेवियर, लेकिन उसको हम फोकस करें राजयोग मेडिटेशन से, तो अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ही मंत्र है, लेजर फोकस। तो आइए हम जो चाहते हैं सक्सेस उसी को कहेंगे, जो चाहे, जहां चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, जिसके साथ चाहे वो प्राप्त करें, वो है सक्सेस। तो हम जो चाहें वो सक्सेस प्राप्त करने के लिए अपने थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शंस को डायरेक्शन दें, फोकस करें कुछ पलों के लिए, अपने विचारों को दिशा दें अपनी सक्सेस की ओर, जो आप चाहते हैं। अपने ध्यान को कुछ समय के लिए आसपास के वातावरण से अलग कर दें। मेरे आसपास हो रही आवाजें और हलचलों से मैं अलग हूं, मैं इस देह से भी अलग हूं, तो मैं कौन हूं? अपने आप से पूछो। भीतर से उत्तर आएगा, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा हूं, लाइफ एनर्जी हूं, जीवन ऊर्जा हूं। मैं आत्मा आंखों के माध्यम से अपनी एनर्जी विजन के रूप में क्रिएट कर रही हूं। शब्दों के माध्यम से मैं एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हूं। मैं ऊर्जा संकल्प के माध्यम से वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही हूं और अपने कर्मों से अपना संसार क्रिएट कर रही हूं। स्वयं को देखे प्रकृति के बीच और पूछें, मैं कौन सी आत्मा हूं? भीतर से उत्तर आएगा, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मेरा मन साफ स्वच्छ हो गया है, मेरी बुद्धि दिव्य बन गई है और मैं आत्मा स्थिर हो गई हूं। इसी स्थिरता में असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा शांति से भरपूर हो गई हूं, शांति कुंड बन गई हूं, शांति के प्रकंपन मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मेरे आसपास का वातावरण शक्तिशाली हो गया है, मेरे वाइब्रेशंस प्योर हैं, मेरे वर्ड्स सुखदायी हो गए हैं। मुझ आत्मा से चारों ओर शांति की शक्ति शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली महसूस कर रही हूं, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम ब्रेव, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही हैं और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन गई हूं। मुझे मनोबल प्राप्त हो रहा है और मैं आत्मा स्थिर हो गई हूं। आई एम स्टेबल। कुछ क्षणों के लिए इसी शक्तिशाली स्थिति को महसूस करें, अनुभव करें। स्टिलनेस फील हो रही है। मैं अचल हूं, अडोल हूं, स्थिर हूं। ऐसी स्थिति से अब मैं आत्मा इस साकार सृष्टि में लौट आई हूं। इस हॉल में स्वयं को देखें, महसूस करें, मैं अब भी शक्तिशाली हूं। अब मैं शांति से हर कर्म करूंगी। शांति की शक्ति से सबसे व्यवहार करूंगी। यही मेरा लक्ष्य है, यही राजयोग है, यही आध्यात्मिक सशक्तिकरण सो आत्म सशक्तिकरण है। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने परमात्मा के साथ हम सबका कनेक्शन जोड़ा। एक बार जोरदार तालियों से हम सब धन्यवाद देते हैं। और अभी मैं कार्यक्रम के अंत में आप सभी का, जो आप सबने इतना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ बैठे, इतना समय धीरज और शांति से सुना, आप सभी का धन्यवाद और ईश्वर का धन्यवाद और पूरी हमारी मीडिया टीम का धन्यवाद का आभार व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहूंगी बीके शशिकांत भाई जी। आप 79 से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं, मीडिया की सेवाएं कर रहे हैं और गुजरात के 70 अखबारों में आपके कई सारे आर्टिकल, लेख लगभग 9600 छप चुके हैं और लगभग ब्रह्मा कुमारी के गुजरात में 150 आप पॉजिटिव मीडिया सेमिनार कर चुके हैं। तो आप सभी का आभार का भार मैं शशिकांत भाई पर सौंपती हूँ।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव के प्रिय संतान, आप सभी महानुभाव, जब शांतनु भाई का एक बार फोन आया था कि सभी पत्रकारों को लेके एक ग्रुप लेके आपको गुजरात से आना है, तो मैंने एक बड़ा संगठन है गुजरात का, उसके प्रेसिडेंट को फोन किया कि भाई साहब, हम आबू में बड़ी कॉन्फ्रेंस हमारी करनी है, तो वहाँ आप सभी को निमंत्रण है। तो बोला कितने दिन क्या है प्रोग्राम, हमने बोला 3 दिन का प्रोग्राम है। उसने बोला आपको मालूम है कि 10 पत्रकारों को भी 1 घंटे के लिए संभालना कितनी बड़ी बात है। हमने बोला नहीं, हमारा ये वहाँ वो अध्यात्म सशक्त पावर है, पॉजिटिव पावर है और अध्यात्मता से भरपूर वो जगह है, और हमारी दादी जी का आदेश है कि अगर 1937 से परमात्मा के आदेश से हम सभी ज्ञान योग और ईश्वरीय ज्ञान क्लासेस कर रहे हैं, उनके आधार पर हमारे जीवन में इतनी शांति पवित्रता सद्भाव आ सकता है, तो बाकी क्यों सभी बच जाए। तो ऐसे सभी दादी जी का अनुरोध था कि सभी प्रकार के भाई बहनों को बुलाना चाहिए। और उसी टाइम से करीब 98 से हमने ये कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किया, अभी 30 साल हो गए हैं और 30 साल से ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में कोई संस्था नहीं होगी जो पत्रकारों को बुलाकर 3 दिन के लिए इतना अच्छा मतलब ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों के अभ्यास भी करावे और मीडिया के बारे में भी बतावे, अच्छे अच्छे स्पीकर बुला के। ये सर्वप्रथम कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था ने किया है, और उसमें से भी खास करके शांतनु भाई जी इतनी मेहनत करके प्रेम से सभी को बुला के आप सभी की विशेष सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये जो सारे प्रोग्राम 3-4 दिन से चल रहे हैं वो टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी चारों ओर पहुंच रहा है, और तन से आप सभी हाजिर हो, लेकिन जिनको मालूम है कि यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है तो मन से भी हजारों भाई बहन यहाँ उपस्थित है। इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि हॉल में पूरी संख्या है, हॉल फुल है, क्योंकि मन से सभी यहाँ है। तो जिसने भी तन मन से ये पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे मंचस सभी महानुभाव जिसने बहुत अच्छे अच्छे विचार यहाँ रजू किए, और अभी तक 3 दिन तक जिसने भी अपने विचार यहाँ बताए, और उस वो भारत को उत्थान के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए जिसने जिसने भी अपने विचार किए उनको साकार करने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कल जब भी आप प्रस्थान करेंगे अपने अपने मीडिया माध्यम द्वारा उसका प्रचार भी करेंगे, और आम लोगों को भी सुख शांति आनंद मिले, शक्ति मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका फिर से बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कि शांतनु भाई भी अगर है तो यहाँ आ जाए, आप सभी भी उनका बहुत खड़े होकर सम्मान करेंगे। माननीय शांतनु भाई जी, शांतनु भाई जी, हम सभी खड़े होकर शांतनु भाई का आप तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना कार्य संभाल के आपने किया है, शांतनु भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
आप सभी के लिए सूचना है, अभी दादी जानकी जी पार्क में मीडिया डेलीगेट के लिए मास कम्युनिकेशन ये मेडिटेशन स्टार्ट हो गया है। आप वहाँ यहाँ से चलकर वहाँ ही चलेंगे, कुछ 25-30 मिनट योग और रह गया है, तो आप सब वहाँ मेडिटेशन का लाभ उठाएंगे। और कल सवेरे जो भी हमारे बंधु और बहनें रहने वाली हैं उनके लिए 7:45 बजे राजयोगा मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर